मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अत्र भवतां सर्वेषाम् एकदा पुनः स्वागतम्। अस्माभिः चर्चा चर्चिता आसीत् कस्मिन् विषये? पवित्रम्। तो पवित्रम् एकः शब्दः, अस्य को अर्थः श्रीधर महोदय? कथं जायते? पवित्रम् आप उच्यन्ते, वार्ता तो सम्यक् वर्तते, किन्तु पवित्रम् मन्त्रः पवित्रम् उच्यते, आपः पवित्रम् उच्यते, सिपि विष्ट विष्टय आप उच्यन्ते, पवित्रम् उच्यन्ते। तो कः को अर्थः अस्य? पवित्रम् एकः शब्दः, पाणिनिना न लिखितम् अस्मिन् विषये, पतञ्जलिना किम् उक्तम्? कथं पुनः भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम्, अर्थात् केन हेतुना भगवतः पाणिनिना सूत्राणि निर्मितानि? तो केन हेतुना अर्थात् व्याकरणस्य किं प्रयोजनं? सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्धे को अस्य अर्थः? प्रथमः वार्तिकः वर्तते तत्र मावश्य, तो अस्य को अर्थः? शब्दार्थ सम्बन्धे नित्ये सति भगवतः पाणिनः लक्षणं प्रवृत्तम्। तो शब्दार्थ सम्बन्धः नित्यः वर्तते इति कथं जायते? यथा पवित्रम् अत्र शब्दार्थ सम्बन्धं कथं नित्यः? यथा अस्मिन् विषये अस्माभिः पुनः पुनर्पुनर्चर्चा चर्च्यते, केन हेतुना? कि पवित्रम् शुक्रवासरे अपि अस्माकं समये पवित्रम् अत्रैव गतः, तस्मात् पूर्वमपि अद्यापि। तो पवित्रम् एकः शब्दः, अस्य को अर्थः? कस्य महोदय? यथा कथं पुनाति? कुर्सी ले लीजिए, वो रखी ना पीछे जी। यथा कः मोदते? पश्वा न, ते अपि आनन्दिता भवन्ति। तो मोदते कः? यः स्तोता वर्तते सैव मोदते, अन्ये तु कष्टम् अनुभवन्ति। तो सम्यक् वर्तते, किन्तु अत्र देवी आपः एकः शब्दः, शब्दनाम आपः, देवी तस्य विशेषणम्। तो अत्र मन्त्रः पवित्रम् उच्यते लिखितमत्र, तु केन हेतुना अत्र पवित्रता आगच्छति?
ईश्वर पवित्रमस्ति, ईश्वरस्य वाणी अस्ति देव, मंत्र पवित्रमस्ति,
यथा तस्य व्याख्या मया कृता। तेन किम् स तो शुद्ध विष्णु तत्र तिष्ठति क्षीर सागरे, तो स शुद्ध स्यात्, अस्माभिः किं क्रियते, स तत्र तिष्ठते क्षीर सागरे अस्माभिः अत्र, तो को पवित्रता तत्र वर्तते अत्र कथम आगच्छति। विष्णु क्षीर सागरे तिष्ठति न तो ये तत् कल्पना वर्तते। हा सम्यक् वर्तते, वार्ता तु मन्यमहे, किन्तु सिद्धे शब्दार्थ एष तु शब्दः वर्तते, तस्य अर्थः तस्य सम्बन्धश्च, तेन विना वैज्ञानिकं यदर्थः स नागच्छति। वैज्ञानिक अर्थः कदा आगच्छति? यदा सम्बन्धं जायते। कोऽपि इतः गच्छति तत्र रेलवे स्थानके लोहपथगामिनी इति भाषायां, है ना, तो तत्र आगच्छति अतिथि कोऽपि, तस्य नाम जानीमः, स इतः ये गन्तव्यं वर्तते स अपि नाम जानाति, किन्तु यदि किमपि चिह्नं न स्यात्, चिह्नमादिकं न स्यात्, लक्षणं न स्यात्, तो स तत्र पश्यति, एष अन्यान् पश्यति, तो कथम अभिसंबंधो भवति इति, किमपि ओम ध्वज स्यात्, किमपि कोऽपि लक्षणं चिह्नं वा स्यात्, तेन जानं भवति, तदेव सम्बन्ध इति। तो बिना सम्बन्धेन सम्बन्धिनां जानं भवितुं नार्हति। तो तत्र यः शिपिविष्टः विष्णु वर्तते, वर्परूपेण तिष्ठति, तस्य यः यः यद् यद् रूपम् इत्यादिकं वर्तते, तो तस्य ज्ञानं तु कदा भवितुमर्हति? पूर्वं विष्णो ज्ञानं स्यात्। सो सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे दैवी आप, तो यदि तस्य ज्ञानमेव न वर्तते, अत्र दिव्यता केन हेतुना वर्तते, कुत्र तिष्ठति, किं करोति, अन्य च एका वार्ता, अन्यद् गौणदेवता मुख्य वा, तत्रापि तु आगच्छति। तो तेन विना सम्यक्तया कोऽपि जातुं न शक्नोति मन्त्रार्थ, मन्त्रार्थ नाम सम्बन्धसहितं मन्त्रार्थ इति। अब ईश्वर वर्तते, ईश्वरः सर्वे, ईश्वरं सर्वे जानन्ति न वा? चन्द्रगुप्त महोदय, भवान् ईश्वरं जानाति न वा? ईश्वरं न जानाति, प्रवचनमपि ददाति तस्य विषये तु, अस्तु, हा, तो ईश्वरं जानाति, ईश्वर एक शब्द, तस्य ये गुणा जानाति, किन्तु अनुभवति किम्? तो शब्दार्थ वर्तते, सम्बन्ध कुत्र वर्तते? यदा अनुभवो भवति, विना अनुभवेन विद्या चतुर्भिः प्रकारैः उपयुक्ता भवति, आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकाले नाम सम्बन्धकाले। तो विष्णु किं करोति, कुत्र तिष्ठति, एकदा पुनः चर्चयामः। तत्र विष्णु इति यज्ञ वै पठामः, लिखामः, व्याख्यामपि कुर्मः, तो यज्ञ वै विष्णु अस्य को अर्थ है? क्योंकि विष्णु एक देवता, तत्र बहुना मंत्रणाम न तो एक विशिष्ट देवो वर्तते, तो तस्य ज्ञानं तो स्यात् एव, किं स्वरूप कः स देव इति। तो यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, तो विष्णु नाम महर्षि दयानंद महाभागैः तत्र सत्यार्थ प्रकाशे प्रथमे समूल्य से व्याकरोत, किम व्याकरोत? यो विवेष्टि व्यापनोति चराचर जगत स विष्णु परमेश्वर। तो अनेन तो विष्णु परमेश्वर वर्तते, तो यज्ञो वही विष्णु कथम इदानीम निर्वचनम सैव निर्वचनम तदेव, किंतु का घटना घटती अत्र यदि यज्ञो वही विष्णु वर्तते थी यज्ञो वही विष्णु यो यह वही विवेष्टि व्यापनोति चराचर जगत से विष्णु यज्ञ कथम इति कथम जायते इति शब्द प्रमाण सम्यक वर्तते। तो विष्णु यज्ञ वर्तते और यज्ञ नाम महर्षि दयानंद महाभागई या परिभाषा तत्र दत्ता कुत्र आर्य उद्देश्य रतनमाला इति नामनी ग्रंथे का सा परिभाषा बिना तेन जानम न भवति कोयम यज्ञो नाम श्रावय जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। अब ये विष्णु घट गया उसमें नहीं, जितना भी पदार्थ शिल्प व्यवहार है और पदार्थ विज्ञान है, पदार्थ कितने हैं? छह हैं। कौन कौन से? के ते द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम षण्णाम पदार्थानाम तत्वजानात इदानीम उच्यताम की विष्णु सर्वव्यापको वर्तते न वा यज्ञ व्यापनोति नावा चराचर जगत। वेवेष्टि व्यापनोति चराचर जगत अस्तु तरी आकाश आकाश द्रव्य वर्तते नावा है ना, अन्य च प्रकृति द्रव्य स्व आगच्छति पदार्थे स्व आगच्छति नावा, तो तस्य व्यापकता वर्तते ना सर्वत्र। तो स और यज्ञेन ये मंत्र सलेखनम चात यज्ञेन यज्ञम अयंत देवा तानी है धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचंता यत्र साध्या संति देवा। अस्य को अर्थ है मंत्र से, अस्य मंत्र से व्याख्या वर्तते यज्ञो वही विष्णु। ऋषियों ने जो भी लिखा है योग दर्शन के सूत्रों से लेके और मीमांसा तक जितने भी है किसी ना किसी एक मंत्र की व्याख्या है, वो किस मंत्र में वो हमें ढूंढना है। अब योगश चित्त वृत्ति निरोध है जो है दो मंत्रों की व्याख्या है, तो यदि हम उसको नहीं पहुंचेंगे ना तो जीवन में चित्त का पता लगे ना मन का पता लगे, क्योंकि योग दर्शन में तो नहीं बताया हुआ है कि ये चित्त क्या है, ये तो नहीं बताया। उसके विचारों को रोको, भाई विचार तो उसमें पैदा हो रहे, पहले तो उसको तो जाने कि वो है क्या जिसको रोकना है। तो ये एक देवता है, देवता के अंदर दो बातें जरूर है, उसका एक गुण है और उसकी एक क्रिया है, तो वो जानेंगे तो हम उसको रोक पाएंगे, अन्यथा रोकना संभव नहीं है। तो अब यज्ञ क्या है? यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा अयजंत यज्ञम कृतवंत देवा, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा, और वो यज्ञ कौन सा था? विष्णु। यज्ञ वही विष्णु, तो विष्णु के द्वारा देवताओं ने क्या किया? यज्ञ किया। और ये मंत्र का वहां विनियोग है, यत्र विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। यत्र विष्णु विचक्रमे, विष्णु ने जब भयंकर रूप से गति प्रारंभ की, त्रिधा निदधे पदम तीन प्रकार से पैर रखे, वो तो पौराणिकों ने तो इस कथा को बुद्धि का विकास न होने से दूसरे रूप में लेके, पर ये कथा है नित्य घटना है। समूढ़म अस्य पांसुरे, इसके पैरों में थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी विष्णु के, है ना, उन्हीं से इसने तीनों लोकों को नाप लिया ये कौन था। इसके लिए फिर समझाने के लिए शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है, कि जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ तो क्या हुआ, तो देवता लोग पहले असुरों को हरा के थोड़ा बैठे हुए थे कि अब असुरों को तो हमने समाप्त कर दिया, अब क्या सेना वेना की जरूरत है, क्या है, अब अपना संगीत उंगीत का कार्यक्रम चालू रखो। तो उसके बाद में क्या हुआ, असुर लोग तो हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं, उन्होंने सोचा कि अब देवता लोग वेद के विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि वेद की आज्ञा थी कि हमेशा सज्जित रहो, वेद की आज्ञा थी आलसी प्रमादी मत बनो, वेद की आज्ञा थी कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यायित, वेद की आज्ञा थी संगच्छधम संवदधम सम्मोमना, अब ये उसके विपरीत चल रहे हैं। अब क्या क्या इनको हराया जा सकता है, क्योंकि जिससे इनको ऊर्जा मिलती है उसी के विपरीत चल रहे हैं, तो ऊर्जा तो मिलेगी नहीं, तो इनको हराया जा सकता है। तो असुरों ने हमला किया और देवता लोग बेचारे पिट पिट के हार गए। हार गए तो अब असुर लोग थोड़ा के पास गए कि भाई अब हम कहाँ रहें, क्योंकि तीनों लोकों में असुरों का राज्य हो गया, ये ऐसा सत्य ब्राह्मण में लिखा हुआ है। अब रहें कहाँ, पृथ्वी से भी भगा दिए, लड़ते लड़ते अंतरिक्ष में पहुंचे, वहां भी असुर अपने हथियार लेके पहुंच गए, द्यूलोक में पहुंचे वहां से भी भगा दिए, अब जाएं तो कहाँ जाएं, चौथा लोक अस्थि नास्ति कहीं ऐसा होगी है ही नहीं, मतलब संदेह है अस्थि नास्ति, वहां ये वचन है कि चौथा लोक है या नहीं है, तो जाए तो कहाँ जाए। तो फिर असुरों को हाथ जोड़ लिए पिटने के बाद कि भाई ऐसा करो, थोड़ी सी तो भूमि दे दो, ऐसा क्यों अन्याय करो, आखिरकार आपके छोटे भाई तो है ना, क्योंकि असुरा देवा संयतासन मंत्र भी है कि असुर और देवता भाई भाई हैं, प्रजापति के बड़े जो सबसे पहले असुर पैदा हुए थे उसके बाद देवता पैदा हुए, तो अब बड़े भाई असुर थे, सोचा कि इनको चिढ़ा और दे, कह रहे कि ये जो तुम्हारा राजा है ना विष्णु, जितने में लेट जाए बैठ जाए उतनी भूमि है, सोचा क्या बिगाड़ेंगे इतनी भूमि लेके, वो तो ठहरे देव, इतनी में अपना विकास कर लेते हैं। तो बस उन्होंने वहां बैठ के यज्ञ प्रारंभ किया। ये पूरा कथना कथा तो है पर इसके सुक्त भी हैं, ये नित्य घटना है। तो वहां से यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ प्रारंभ करते करते अब असुर तो यज्ञ से डरते हैं, ये सीधी बात है, असुरों ने ये नहीं सोचा था कि ये यज्ञ करेंगे, उन्होंने तो सोचा था इनको चिढ़ा के भाई पड़े रहो एक कोने में कहीं, जैसे कोई घर में बड़ा बूढ़ा हो जाता है सेवा नहीं करते कि कोने में पड़ा रहता है तो क्या बिगाड़ेंगे। तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया कि थे तो बुद्धिमान, पिटने के बाद और ज्यादा बुद्धिमान हो गए थे, तो अब उन्होंने हवन प्रारंभ किया। अब हवन जहां जहां बढ़ेगा सुर वहां ठहर नहीं सकते, पक्की बात है, वायरस कीटाणु दुष्ट वृत्तियां तो वो बढ़ती रही, यज्ञ की अग्नि और वो असुर मैदान छोड़ते रहे, बढ़ती रही छोड़ते रहे, ऐसे तीनों लोगों से पार उनको कर दिया। वहां का वचन है यज्ञ वही, और अब हो गया नहीं चराचर जगत, आगे समझ में महर्षि दयानंद ने कहां से लिखा हुआ है वैसे समझ में नहीं आता। भयंकर नाम है, भयं करोति भयंकर भीष्म अपि तस्मादेव, तो भयंकर नाम है स्वकीय कृत्य ना असुरान प्रति, असुरान प्रति भयंकर गति आसित ने तो देवानाम प्रति थी। तो ते पुनः ए वार्ता किम अभूत कि इदानीम ते पलायितवंत है ते आगतवंत है असुरान ए तेसाम पार्श्व किंचित देहि अस्माभिः दत्तम आसीत, तो नैव जीवन कंटका भवन्त किंचित अभी न दास्यामि, तो उन्होंने तो भूमि दी और इन्होंने कुछ नहीं दी, तो फिर उनको चौथे लोक में फेंक दिया अस्ति नास्ति, वो लोक है या नहीं है वो देवताओं को भी पता नहीं है, तो भयंकर अंधेरे में उनको फेंक दिया, वो फिर दोबारा नहीं आए। और ऐसे ही जो हमारी वृत्तियां है ना जब भयंकर अंधेरे के में दबा दी जाती है वापस,
तो है तो सही नहीं है,
अस्ति नास्ति
जब भेज दिया तो है तो सही,
अब वो पता नहीं कहाँ गिरे होंगे वो इन तीनों लोकों से तो पार हैं, अब वो है या नहीं है ये लिखा हुआ है वहां, क्योंकि देवताओं को भी संदेह है। तो ये है यज्ञ वही विष्णु, और वही यहाँ चर्चा है उसकी, उसी का वो रूप है जिसको आप कह रहे हैं, कौन सा रूप है वो जिसमें आया था मंत्र में, वही रूप है कि ये कैसे फैल गया किसी को पता ही नहीं लगा, ये किस रूप में रहता है, और क्षीर सागर में भी रहता है। क्षीर सागर क्या है, हाँ जहां आप है तत्व भरा हुआ है दिमाग के अंदर, ये विष्णु जो है ना अंतिम सीमा है, तो हमारी शरीर की अंतिम सीमा कौन सी है, ये जिसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, विष्णु के कारण ही खुला होता है। जब बच्चा पैदा होता है बड़ा मुलायम होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे संस्कार दूषित आते रहते हैं वो दृढ़ होता रहता है। जी
जी तो दिमाग का डॉक्टर थे, कान नाक गलाना, तो वो एक चित्र दिखा रहे थे जो वास्तव में है। उसमें जैसे पुराने कोई चित्र बनाते हैं क्षीर सागर का और नदी का, तो ऐसे बड़े दिमाग में भी ऐसा ही है बिल्कुल। ये शेषनाग जैसा है एक चित्र, उसमें रस भरा हुआ होता है और लक्ष्मी एक ऊपर ऊपर जैसे लगता है लक्ष्मी बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसा कैसा चित्र भी दिखाया।
हाँ, इसका नाम है संस्कृत में मस्तिष्क गह्वर, मस्तिष्क का जो गड्ढा है और जहाँ सोम भरा हुआ है। हाँ, सोम है वो, जल नहीं है, सामान्य नहीं है वो। जल होगा तो वहाँ, जल भर गया तो कीड़े पड़ जाएंगे दिमाग में, अगर जल भर गया तो। जल नहीं है वो सोम है जिसका इंद्र पान करता है ना, और तभी आप जिंदा हैं। वो हम देवत कांड में करेंगे, पाठ करते हैं। तो अत्र पर्यंतम सुस्पष्टम पवित्रता कुतः कुतः केन हेतुना आगच्छति। तो पवित्रता आपनुयात एवं नशा चतुर्भि प्रकार पवित्रता आगच्छति, पूर्वम आगम काले न तो आगति आगतवती, पुनः स्वाध्याय काले न भी कृतम इदानी परस्परम, कुतः आगच्छति कियत आगच्छति न वा पुनः संबंध जाने न। तो विष्णु एक यज्ञ नामन पदार्थ इति अस्माभि प्रस्तुतम। अग्रे विष्णु अन्य अपि नामानि सन्ति, प्राणो वै विष्णु, गया वै विष्णु, गया नाम प्राण, प्राणो अपि विष्णु रूपेण वर्तते, अर्थात यद मुख्य प्राण जिस ब्रह्म प्राण नाम विष्णु रूपेण अस्माकं शरीरे तिष्ठति। आत्मा पशु तत्र आविष्ट इति शिपिविष्ट, शिपि पशु और पशु जहां रहते हैं वो शिपिविष्ट है। आत्मा का जो केंद्र है जहां आत्मा शरीर में रहता है उसका नाम भी विष्णु है, क्योंकि व्यापनोति निर्वचन सब जगह महर्षि दयानंद का ही घटेगा, घटा लो आत्मा में शरीर जगत गच्छति, शरीर भी चल रहा है, और जब वो नहीं होता तो शरीर मुर्दा हो जाता है। सर्वत्र व्याप है शरीर में पूरा, वहीं से बैठे बैठे नियंत्रण कर रहा है। शक्ति व्याप्ता वर्तते और किम जानी में वयम स भ्रमणम कुरियात शरीर इदानीं तो ज्ञानम न वर्तते ना कि वह शरीर एक कुत्र कुत्र भ्रमति, ज्ञानम वर्तते कि तो संभाव्यते कि एवम एवम अत्र आगच्छे तत्र गच्छेत एवं भ्रमणम कुरियात। भाई जब व्यवस्थापक है कभी तो भ्रमण करता ही है ना, केवल भले ही अधिकतर अपने कमरे में रहे तो कभी तो भ्रमण होता ही है, तो कभी आत्मा भी तो शरीर का व्यवस्थापक है तो कभी तो निकलता होगा देखने के लिए क्या समस्या है, क्या ठीक ठाक चल रहा है। उदराणी केवलम से पश्यति, पश्य को भवती, पश्य को भवती उद्राणी से तो भ्रमति, किंतु अगर किमपि विशिष्ट भोजनम भक्ष्यति तो विशिष्ट उद्रस्य उपलब्धि तो भवती है, विशेष भोजना तो स आत्मा किम करिष्यति। स आहारात् तो शरीर, आहारस्तु तो शरीरस्य वर्तते, तो शरीरस्य वृद्धि भवति उद्रस्य, तस्य दुष्टता भवति किम, आत्मने भवति किम। अस्तु तर्हि तो एते भव तत्र बहुनी नामानि अस्य विष्णुः सन्ति तत्र शास्त्रेषु। इदानीं पश्य व्याख्या क्रियते, मंत्रस्तो भूत ना अस्य विष्णुः अन्यत् यद कार्यम वर्तते अन्यस्मिन् मंत्रे या चर्चा वर्तते तस्मिन् विषये चर्चा अस्माभिः अपि चर्चते। प्रतत्ते अद्य सिपिविष्ट नामार्य संसामी वयुनानि विद्वान तम त्वा गृणामि तव सम अतव्यान क्षयंतम अस्य रजसः पराके। अस्य अयम अर्थ सिपिविष्ट अत्र संबोधने वर्तते वा कर्मणि वर्तते वा कस्मिन् कार्ये वर्तते? तदेव जानम भविता कथम जायते अत्र संबोधने वर्तते सर निघात कथम जायते ऐसे सर निघात इति तो अत्र संबोधने वर्तते कथम जायते स्वरेण। तो इदानीं किं भविष्यति हे सिपिविष्ट यदि संबोधने वर्तते आरंभे किम् आगच्छति मंत्र हे यस्य अपि हे इंद्र हे सिपिविष्ट हे विष्णु तत्ते अद्य नाम आर्य यत्ते प्रकर्षेण यह नाम वर्तते किम नाम वर्तते आर्य आर्य वर्तते आर्य अपि वर्तते विष्णु किम वर्तते और सर्वे आर्य समाजिने किम वर्तन्ते आर्य है ना ते अपि आर्य समाजिने नाम आर्य पूर्वम पश्चात समाजिने संसामी संसामी नाम है स्तौमी मैं आपकी स्तुति करता हूं जो आपका कौन सा नाम है आर्य नाम की स्तुति करता हूं आर्य या आर्य दोनों हो सकते हैं आर्य 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 क्योंकि यहां दीर्घ दोनों को हो जाएगा तो आर्य स्वामी आर्य शब्द से को अर्थ है स्वामी को कहने वाला है जो वैश्यवर को कहने वाला तो वैश्य तो है ही नहीं विष्णु तो इसका मतलब है स्वामी है। तो जो आपका स्वामी वाची नाम है या जो आपका श्रेष्ठ नाम है उसकी मैं स्तुति करता हूं और कैसा विद्वान मैं सामान्य नहीं हूं जो स्तुति कर रहा हूं। विद्वान का अर्थ क्या है जानन कितनी बार तो बताया विदे शतुर वसु अस्य को अर्थ है अस्य सूत्रस्य को अर्थ है क्या अर्थ निकलेगा को अस्य अर्थ है जानता हुआ कैसे निकला हाँ क्षत्रिय प्रत्यय के स्थान पर वो क्या है वर्तमान काल में ही होते हैं तो अब इससे क्या निकला विद्वान का अर्थ ये है कि जिसने सब कुछ जान लिया वो विद्वान ही उसका नाम वेद में है श्रोत्रिय अनुचान और जो जान रहा है वो है विद्वान। तो मैं आपके इस आर्य श्रेष्ठ स्वामी रूप को विद्वान नाम है जानन जानता हुआ और वयुनानी हाँ अहम एतद रूपम जानम मैं इस रूप को जानता हुआ और वयुनानी वयुनानामी प्रज्ञानानी जो जानने के योग्य हैं और उनको भी जानता हुआ। तो वयुनानी विद्वान जितने भी आपके जानने योग्य स्वरूप है केवल सिपिविष्ट नहीं और भी जितने आपके रूप हैं उनको जानता हुआ संसामी स्तुति करता हूं। इससे क्या तात्पर्य निकला तो स्तुति बिना जाने हो ही नहीं सकती और यदि हम स्तुति करते हैं ईश्वर की बिना जाने तो स्तुति होगी क्या? सीधी बात है शब्द रूप में तो जानते हैं तभी कर रहे हैं संबंध रूप में जानेंगे तो स्तुति क्या हो जाएगी वयुनानी हो जाएगी अन्यथा स्तुति कैसी है स्तुति वर्तत है। तम त्वा गृणामि अहम तम गृणामि या तेरे उस रूप को मैं ग्रहण करता हूं किस रूप को जो स्वामी रूपी आप हैं जो जानने योग्य जो वयुनानी है मैं उसको ग्रहण करता हूं। और तव सम तव किस नाम में पड़ा हुआ है या तो महान नाम में है या ये बल का वाची भी है तो तव सम नाम है महानतम और ऐतव्यान, ऐतव्यान इसका विपरीत कर दो, क्या अर्थ निकला? अमहान। तो महान से महान और बड़े से बड़े और छोटे से वामनो वही विष्णु, विष्णु ने अपना रूप छोटा सा कर लिया था, तो वो वामन रूप भी कब था? जब वो यज्ञ की भूमि पे बैठा था, और जब वो फैल गया तो व्यापनोति चराचर जगत, तो वो फिर ऐसे हो गया। ये अति वामन है, हाँ, क्योंकि जो सोम याग या जो इष्टिया है ना, वो वामन रूप है इसके। वामनम अतिक्रांतवान, थोड़ा है वही तो है जो वो छोटा रूप कर लिया था, तभी तो इतनी सी जगह दी थी बैठने के लिए, फिर फैल कैसे गया, अपने रूप को सुकोड़ लिया था उसने। हाँ, सोमयाग थोड़ी करा, यज्ञ के लिए जगह मांगी थी, सोमयाग के लिए नहीं मांगी थी।
बड़े बड़े आपने ही तो अति वामन है।
हाँ, ये अति वामन है।
वामन
ये है कि जैसे इससे थोड़ा बड़ा तीन कुंड होंगे, है ना, उसमें कोई इष्टी होगी, वो है ये अति अग्निहोत्र। तो ये यज्ञ नहीं है वस्तुतः, अगर इसको कहे ना तो यज्ञ की परिभाषा में भी ये होम है, मैं ज्यादा नहीं चर्चा, ये होम है, ये यज्ञ नहीं है। अग्निहोत्रम जुहोति इसका ये वचन है, जहां यजति का प्रयोग होता है उसका नाम याग है, यानी यज्ञ है विशेष। सामान्य रूप से दोनों को माना जाता है, मैं पूरा निषेध नहीं कर रहा हूं, पर जहां दोनों की अलग अलग आहुति, मतलब अलग अलग बताया गया, तिष्ठम होमा बैठ के जो किया जाता है, स्वाहाकार प्रदान, स्वाहा जहां बोला जाता है, जी होता है, अग्निहोत्रम जी होती, और जहां वसटकार का प्रयोग होता है, याज्ञा पुरोनवाक्य बनता होते हैं, खड़े होके आहुति जाता है, उसका नाम यजत है, मतलब यज शब्द वहां प्रयोग है। नहीं है, महर्षि दयानंद जी करके गए संस्कार विधि में, हाँ वही है हमारा प्रमाण, वो भी एक ऋषि थे, वो हमारा प्रमाण है, ये नहीं कहा जा सकता कहीं नहीं है, संस्कार विधि में है। बाकी तो ये अग्निहोत्री नहीं है, मतलब अगर प्राचीन में जाएं तो ये महर्षि दयानंद द्वारा अग्न्याधान अग्निहोत्र इष्टि का एक संक्षिप्त छोटा रूप है, पात्र भी इष्टियों के दिए हुए हैं, अगर आप फोटो देखें ना कौन से पात्र प्रयोग होते हैं, तो वो तीनों को मिला के एक हर व्यक्ति करे, उसमें तो गृहस्थी ही कर सकता है, पति पत्नी जिन्होंने आधान किया हो, सहपत्नी की यजमानी कर सकते, इसको तो कोई भी कमरे में बैठ के कर लेता है, वो तो इससे डबल कमरा चाहिए करने के लिए, तो जितने भी वानप्रस्थी हैं तो लगभग सभी के लिए पूरी जगह हो जाएगी अगर वो ये करेंगे तो। और आगे चलें, क्षयंतम अस्य रजसः पराके, क्षयंतम देखें कौन इसमें स्वर बताएगा, ये महत्वपूर्ण बात है। क्षयंतम अस्य रजसः पराके, अस्य अस्य कस्य अंतरिक्ष, अस्य रजसः इसका विशेषण है, रजसः का है, अस्य रजसः अस्य अंतरिक्षस्य पराके, पराके नाम है पहले भी आया है, पराके पराके नाम है, परार्ध संख्या अत्यधिक दूर नाम में पड़ा हुआ, अंतिम संख्या जो है ना ब्रह्मांड के जो नापना है, तो आपको अग्नि पहली संख्या है, जिसको अग्नि वही देवा नाम, आओ मैं सबसे पहले अग्नि मिड़े, वो अग्नि पैदा हुई थी, उसके बाद जो अंतिम तत्व है उसका नाम है विष्णु, वो परार्ध संख्या है, मतलब अगर विष्णु को हम संख्या में गिनेंगे तो वो परार्ध है, उससे वो पूरे ब्रह्मांड की एक नाप की सीमा है, उसके बाद ब्रह्मांड नहीं, तीन लोकों से की जो अंतिम सीमा है वो परार्ध है, उसी को ये कह रहे हैं। आदिकाल की नहीं, वो ईश्वर की संकल्प अग्नि है, जो ईश्वर से पैदा हुई, वो मनुष्यों की नहीं है, वो देवताओं की नहीं है, हाँ विष्णु जो है मनुष्यों की अग्नि है, मतलब बाद में बनी है प्रकृति से और ईश्वर के किसी से, इसलिए अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वो पुरोहित कैसे, पुरैनम, पूरा अर्थ घटा लो ना, पुरैनम ददति कौन, आप और हम, निरुक्त कार्य के अनुसार जहां अहम शब्द का या उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, उसकी मंत्र की व्याख्या ईश्वर पर ही आध्यात्मिक है, तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ, ईड़े, तो उत्तम पुरुष हो गया, तो परमात्मा कह रहा है कि अहम पुरोहितम ऋतिजम होतारम रत्नधात्मम यज्ञस्य देवम अग्निम ईडे। और फिर आगे क्या बनता है उसका, दूसरे मंत्र में बताया अग्नि पूर्वे भी ऋषि भिरिड्यो नूतने ऋत। अब जो इसके बाद में जो ऋषि जो पांच प्राण बनेंगे वो भी अग्नि के बिना नहीं बन सकते, और उसके बाद में जो पांच प्राण से जो आगे सृष्टि का निर्माण होगा नूतने ऋत। स देवान यह वक्षत, वक्षत नाम वहत, वो देवताओं को यहां लाए, मतलब यही अग्नि आगे देवताओं का निर्माण करेगी, पूरा सुख सृष्टि निर्माण का है। अगला मंत्र क्या है तीसरा, विरागमत अग्निर होता, होता कस्मात अहावयति इति सत्य, पहले भी है जो बुलाता है होतव्यम भवति इति, तो सारे परमाणु का आपस में मिलाने का काम किसका है, होता का है। और कवि प्रतु, कवि किस अर्थ में आया था पीछे, क्रांतिदर्शी, क्रांतिदर्शी। और कर्तु कवि क्रांतिदर्शी क्रमणाय कर्तु यज्ञानी यस्य, कर्तु यज्ञ नाम में पड़ा हुआ आगे सृष्टि का निर्माण का यज्ञ चलने वाला है, पूरा सुख उस बात को कह रहा है कि सृष्टि निर्माण में पहले पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो परमात्मा की अग्नि है वो, हमारी और आपकी नहीं है। क्षयंतम में स्वर कैसे लगा भाई बताइए, चलो क्या अर्थ है उसका, और निवास से अन्यत्र अंतोदात किस अर्थ में होगा, तो क्षय का दूसरा अर्थ कौन सा है, मैं बोलता हूँ क्षय प्राप्नु ही, इसका क्या अर्थ है, टीवी का रोगी हो जा मर जा, और क्षय प्राप्नु ही है घर सज्जित है आप आइए, है ना, तो कितना अंतर होगा स्वर से, नहीं ऐसे ऐसे नहीं कहा जाता, जब कोई अतिथि आ रहा था ऐसे कहेंगे अरे भाई देखो वहां पड़े बिस्तर बिस्तर जाके सो जाओ, छोटे बच्चों के लिए वेद का ज्ञान नहीं है, और जिसने पढ़ा हुआ ऐसा व्यवहार छोटे बच्चे के साथ भी नहीं करेगा। तो आगे चलें, तो क्षयंतम अस्य रजसे पराकेश, क्षयंतम नाम निवसंतम, ये कहाँ रहता है विष्णु, ये बता रहे हैं रजसह पराके, अंतरिक्ष के आर पार, मतलब अंतिम सीमा पे रहता है, रजसे अंतरिक्ष नाम में पड़ा है, रजसे रजांसी लोकान लोका उच्चन्ते पीछे है ना, रजसो विमान, तो पीछे आया निरुक्त में भी आया है, तो ये इसलिए, हाँ बोलिए, हाँ क्षीर सागर में रहता है, यह अंतिम हमारा जो है ना पैरों से गणना होती है हमेशा, तो यहाँ ये अंतिम स्थान, और जो हम ब्रह्मांड का एक भाग है या नहीं, हमारा अंतिम अवयव कौन सा है, वो यहाँ रहता है, ऐसे इस ब्रह्मांड का भी एक भाग है, इसका अंतिम अवयव कौन सा है, वही विष्णु रहता है, और उसको संसार का कोई भी वैज्ञानिक नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इनके पास वो गणना ही नहीं है और न वो ज्ञान है, बुद्धि में तो आ नहीं सकता, ये तो भगवान का बताया हुआ है, क्योंकि इनकी भगवान को पता है कि मैंने अंतिम पदार्थ कौन सा बैठा रखा है, क्यों जी जब ये संसार बना हम बन चुका था तब हम आए थे, और जब ये नष्ट हो जाएगा तब हम उससे पहले हम चले, तो कौन बताएगा कि ये बना कैसे, किससे बना, क्या मैंने कहाँ रखा हुआ, उसने जिसने बनाया वैज्ञानिक कभी नहीं ढूंढ सकते, लगे रहो जीवन भर वेद ज्ञान और आना ही पड़ेगा, विकल्प नहीं है। और आगे चलते हैं, तत्द्य सिपिविष्ट नाम अर्य, अर्य ही किया प्रशंसामी, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, अर्यो अहम ईश्वर अथवा अर्य अहम, अहम प्रशंसामी अर्य ईश्वर, ध्यान देने की बात है दोनों जगह घटेगा, अर्यो अहम ईश्वर मैं स्वामी भी हूँ और समर्थवान भी हूँ, तो मैं विष्णु की स्तुति कौन करेगा, कोई कमजोर व्यक्ति करेगा क्या, क्या कह रहे, वयुनानी विद्वान आपके सभी रूपों को जानता हुआ, तो कोई कमजोर व्यक्ति तो होगा नहीं, वो ऋषि कोटि का व्यक्ति तो सारे रूपों को जानेगा, तो इसमें वो ईश्वर भी है, ईश्वर है अकस्मात है, पाणिनि का भी लगा लिया करो, जब ईश्वरीयवान तो आपने कह दिया, पाणिनि ने कहा बनाया हो ईश्वर को, हाँ तो वो बता दिया करो पहले, वो तो निर्वचन तो बाद का है, वहां से काम ना चले, तो ईश्वर, ईश्वर नाम है अब निर्वचन करो, ऐश्वर्य अकस्मात ईश्वर से भावो कर्म हो, बात वही आगे घूम के ईश्वर का अर्थ पता ही नहीं लग रहा। वही क्या बात आई कि ऐश्वर्यवान और ऐश्वर्य अकस्मात ईश्वर से भाव कर्म हुआ, तो अर्थ तो ईश्वर का नहीं खुला इससे। बलदेव जी का कोई निर्वचन खोल दे तो बताइए, क्योंकि ये कई बार ऐसा निर्वचन करते हैं। तो मतलब जिसके लिए आप सुबह से शाम तक उपासना करते हैं, 10-20 बार नाम उच्चारण करते हैं, आप उसके अर्थ को नहीं बता पा रहे, समस्या कहाँ है? ऐसा नहीं है, धातु का वो अर्थ नहीं है, ध्यान रखना। अनिर्वचनीय भी नहीं, जो शब्द है कोई भी शब्द अनिर्वचनीय नहीं है। क्या कहा भाष्यकार ने? संति शब्द अप्रयुक्त, ऐसा नहीं है। यदि त्रयो लोका है ना, चत्वार वेदा सांगा सहरस्य बहुधा विभिन्ना, एक शतम अध्वर्य शाखा सहस्य वर्तमा सामवेद नवदा अथर्वणवेद वाकवाक्यम इतिहास पुराणम इति एतावंतम शब्द प्रयोगम अनुनिशम्य संति शब्द अप्रयुक्त इति वचनम केवलम साहस मात्रमेव। तो जो शब्द है वो निर्वचनीय है, भाष्यकार ने कहा, ढूंढो, चलो कल ढूंढ के लाना। तो जिसके लिए ईश्वर के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, ईश्वर को तो शब्द के रूप में तो ढूंढ लो, उसका विज्ञान क्या है?
पीछे
तो अरि कस्मात अगर ये तो शब्द का पर्यायवाची जी बता रहे हैं, मैं ईश्वर का तत्व पूछ रहा हूँ। ईश्वर को तो बता दो, एक भी व्यक्ति ने जो ईश्वर को बता दे ऐश्वर्यवान, हमने कहा कि ऐश्वर्य अकस्मात की तदवान, तो बात तो वही आ गई, पर वो ईश्वर क्या है? क्यों जी, ऐश्वर्य क्या राम और कृष्ण के पास नहीं था क्या? तो सभी को, सब लोग ईश्वर को नहीं चाहते, 7.5 अरब में कितने लोग ईश्वर को चाहते हैं? ना बिल्कुल नहीं चाहते, कम्युनिस्ट नहीं चाहते और दूसरे लोग नहीं चाहते, चाहते हैं तो विकृत रूप में चाहते हैं, तो वो ईश्वर नहीं है जिसको चाहते हैं। चलो कल चर्चा करेंगे ईश्वर को ढूंढ के लाना कि ये वस्तु तो ईश्वर है क्या, शब्द के रूप में तो ढूंढ ले, अर्थ संबंध बाद में घटा लेंगे। अब थोड़ा वो तो चलने लगी ना, निर्वचन में शक्ति तो आने लगी ना, तो ढूंढ ढूंढिए, आगे चलते हैं। ईश्वर स्तोमा नाम, तो अरियो अहम ईश्वर स्तोमा नाम, मैं स्तोमो का ईश्वर हूं, ये ध्यान देने की बात है। अगर ये अपने आप को कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है ना, तो ये कौन है? स्तोमो का स्वामी भी है, मतलब वो मंत्रों के समुदाय के रहस्य को जानने वाला भी है। कि मैं सामान्य नहीं हूं कि आप पता नहीं कौन बुला रहा है, क्यों समय बर्बाद करें। हम सबकी यही हालत है, कोई सामान्य व्यक्ति आ जाए जिससे लगे समय बर्बाद हो तो कहां समय लगाते हैं, है ना? और कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो स्टेज पे भी समय लगाते हैं, है ना? तो वो है, इनकी भी यही हालत है कि मैं सामान्य नहीं हूं। ये मत समझ लेना कि मैं आपके इस रूप को जानना चाह रहा हूं तो मैं कोई सामान्य नहीं, मैं इसके योग्य भी हूं। और आगे देखिए, तंत्वा स्तोमी तव सम एतव्यान तव से इति महतो नाम धेयम, मैं आपके बड़े से बड़े रूप का और छोटे से छोटे रूप को स्तुति कर रहा हूं। महतो नाम धेयम उदितो भवति, उदित नाम है, ऊपरी गत है, उदित ऊपर गया हुआ होता है, विष्णु का जो महान नाम है ना वो ऊपर गया हुआ होता है, यानी अभी जो 12 बजने वाले हैं तो 12 बजे का जो सूर्य है उसका नाम विष्णु है। अगर इसको आदिदेविक व्याख्या विष्णु की करेंगे तो जो बिल्कुल जब सिर के होता है, क्योंकि विष्णु कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, इसका और उसका जब सीधा संबंध होता है तब वो विष्णु है, इसलिए इसका, हाँ बिल्कुल, इसलिए चोटी रखी जाती है ताकि सीधा एंटीना विष्णु से संबंधित हो जाए। नहीं, सबको जरूरत होती है, वो इससे पार हो जाते हैं, विष्णु के केंद्र से ही पार हो जाते हैं। नाम धेयम उदितो भवति, तो उदित नाम है ऊपरी गत भवती, तो सिर के ऊपर जाता है। ये पूरा रहस्य है इसमें कि वो ये आएगा देवत कांड में आएगा, जो सूर्य के जो 12 द्वादश आदित्य हैं, जो 12 देवता, किसका क्या समय है, तो इसका बिल्कुल मध्यान में सिर के ऊपर, क्योंकि ये विष्णु यहाँ रहता है, इस विष्णु का उस विष्णु का संपर्क करना है, अगर ऊर्जा लेनी है तो तभी होगा, और ऊर्जा के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, तो ये साधन है। इसलिए विक्रम जी पहले सीधी लेते थे, आजकल तो टेढ़ी करके रखते हैं, पहले ये अपनी चोटी पे मोह मावजी लगा के ऐसे खड़ी रखते थे क्यों जी, वर्षों तक इन्होंने किया है क्योंकि एंटीना टेढ़ा रहे तो भी बात नहीं बनती विष्णु को तो जान वान पता नहीं इनको हुआ नहीं, पर ये जरूर था कुछ ना कुछ ऊपर से आ रहा है। तो आप लोग भी अपना शहद वहद मोम मोम लगा के जब 12 बजे होए तो एक बार प्रयोग जरूर करें। और इसमें रहस्य एक और है, लोग कहते हैं ना चोटी से क्या होगा, हमारे बड़े बड़े लोग भी कहते हैं भाई चोटी से तो कुछ नहीं, तो प्राचीन जमाने की बात थी कि विद्यार्थी की पहचान है, क्यों जी, जो अंग्रेजी जानते हैं राजे जी से पूछ लेते हैं, ये पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि कहाँ रहती है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो कहाँ रहती है, वो यही रहती है, ये जो चोटी का हिस्सा है ना वो यही होती है, रोग ग्रंथि करती क्या है, वो जितनी भी अन्य ग्रंथियां उसको ऊर्जा उसी से मिलती है, और व्यक्ति यदि चुस्त रहना चाहता है, आलस प्रमाद से दूर रहना चाहता है, तो एंटीना हमेशा गांठ क्यों लगाते हैं, आपने कभी विचार किया कि गायत्री मंत्र का पाठ करके गांठ लगाएं चोटी में, इसका क्या तात्पर्य, पहले खोले जब आप चोटी में गांठ लगाएंगे तो एक बार खींचेंगे फिर ऐसे करेंगे तो दिमाग जो है ना ऊर्जा भर जाएगी उसमें, हाँ, और वो दबाव रहेगा, गांठ लगाने से क्या रहता है, दबाव रहता है, और दबाव में ज्यादा काम होते हैं, होते नहीं होते, क्यों जी, वैसे धीरे धीरे करते रहो, और अभी अतिथि आने वाला है 10-20 और कमरा उमरा हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा, 10 मिनट में ठीक ठाक हो जाता है। दबाव का तात्पर्य उसमें से जो रस झरने चाहिए वो जब खिंचाव रहता है तो रस झरते हैं, जिसका नाम है मस्तिष्क गह्वर, ये उसका केंद्र है, तो इसलिए, और सूर्य काली चीजों की ओर आता है और उसके लिए भी कोई एंटीना चाहिए सूर्य की ऊर्जा को लेने के लिए, बिजली बिजली, जब एंटीना नहीं है तो सीधा या तो टकरा के वापस चला जाएगा या ज्यादा प्रभाव कर देगा, तो इसलिए उसके लिए बुद्धि के लिए चोटी मोटी जरूरी है, किसी ने नहीं रखी है तो रख लें और आगे चलें। ये पूरा हमारी हर क्रिया विज्ञान है, हमारी हर क्रिया हर आचरण एक विज्ञान है, ये हम धीरे धीरे अपने व्याख्यान में सिद्ध करते रहेंगे। मैं पढ़ने से बनेगी, बिना पढ़े तो कोई ऋषि बन ही नहीं सकता, ऋषि दो प्रकार के, एक तो भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय तो दिखाई देता ही नहीं है किसी का, वो तो बचपन में दिख जाता है, तो हम सब उपाय प्रत्यय हैं, तो उपाय तो करना पड़ेगा, जल्दी बन जाएंगे अगर उपाय कर, जल्दी बन जाती हैं क्योंकि उनमें सरलता होती है और सरलता से पवित्रता आ जाती है। अब इतिहास ही नहीं मिल रहा तो क्या करें, पता नहीं कितनी आगे चलते हैं। तो निवसंतम अस्य रजसह पराके पराक्रांते, वही प्रार्थ संचय की लोक के अंतरिक्ष के पार है ये विष्णु, मतलब अंतिम अवयव है, उसी को कह रहे निवसंतम अस्य रजसह, रजसह अस्य निवसंतम, रज अंतरिक्ष के क्षेत्र के बाहर, पराके पराक्रांते अंतिम, परासंख्या क्या होती है अंतिम, क्रांत किया हुआ इसने, अर्थात यहां से लेके वहां तक क्रांत किया, किंतु मुख्य केंद्र अंतिम है, पहला केंद्र अग्नि है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में आता है अग्नि वही देवा नाम अव में, लिख लीजिए इस वचन को, अग्नि वही देवा नाम अव में, अग्नि जो है देवताओं का सबसे पहला भाग है और विष्णु वही परम है, वो अंतिम संख्या, उसके बाद कोई निर्माण नहीं हुआ। देवा नाम अव म, अव म, अव में मतलब इस ओर का, और विष्णु वही परम है, शतपथ ब्राह्मण का है ये, संभावना है कि तृतीय कांड का है। अग्नि वही देवा नाम अव में, इस ओर का है, मतलब पहला अवयव है, और विष्णु वही परम है, विष्णु जो है अंतिम है, इसी को ये मंत्र में कह रहे हैं, बिना शतपथ ब्राह्मण के बहुत सी चीजें नहीं खुलती, यज्ञ भी नहीं खुल सकता था, यज्ञ वही विष्णु कैसे है, क्योंकि महर्षि दयानंद का निर्वचन तो यज्ञ पे नहीं घटता अगर उसकी वैसी व्याख्या न की जाए तो। और आगे चलते हैं, अब शिपिविष्ट अस्य शब्दस्य अस्माभि विष्णु अस्य शब्दस्य अस्माभि निर्वचनं कृतम्, अग्रे वर्तते आघृणी आगत हृणी, आगत हृणी यस्य से आगत हृणी, जिसको क्रोध यानी मन्यु आ गया है वो कौन है? हाँ, वैसे दीप्ति अर्थ में है, साथ में क्रोध में कभी दीप्ति नहीं होती, तो इसको मन्यु मानना पड़ेगा। मन्यु में दीप्ति होती है, क्रोध में तो दीप्ति कहाँ होती है? खुद भी सिर फुड़वाता है, दूसरे को फोड़ता है। दीप्ति मतलब बुद्धि में प्रकाश रहता है। क्रोध में और मन्यु में अंतर क्या है? मन्यु आचार्य भी करेगा, माता पिता भी करेंगे, उससे बुद्धि से नियंत्रण चला जाता है क्रोध में, और इस पे बुद्धि पे नियंत्रण रहता है, वाणी में थोड़ा ऐसा चेहरे पे थोड़ा दिखाना पड़ता है। चेहरा लाल होना तो मन्यु में भी हो सकता है, क्रोध है अकस्मात, ये कर ले ताकि पता लग जाए कि क्रोध में और मन्यु में अंतर क्या है। मन्यु अकस्मात, क्रोध अकस्मात, को उभयो को भेद उच्चतम क्रोध विमोहने और विशेषण मोहयती विमोह, और मोह क्या है? मुह है वह चित्ते, और विगत है चित्त संजानम अस्मात। समझ में आ गया? क्रोध क्या है? जिसमें जान नहीं रहता अच्छे और बुरे का, ये क्रोध। और मन्यु मन जाने, मनु अबोधने तस्माद मन्यु, तो जानाति अवबुद्धते अस्मिन इति मन्यु, तो दोनों में अंतर हो गया। उसमें जान रहता है, भावना अच्छी रहती है, पर आंखें भी ऐसी रहेंगी, कई बार वाणी भी तेज होगी, नहीं तो डरते नहीं व्यक्ति सामान्य भाषा से। क्यों श्रीधर जी? क्रोध की तो कहीं वेद में प्रार्थना ही नहीं है, क्रोध देंगे तो सबकी बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर क्रोध हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा? कक्षा में हो गया तो
क्रोध नहीं करना चाहिए
ना, बिल्कुल नहीं है, मन्यु करना है। क्या किस पे करना चाहिए है? तो क्रोध का अर्थ मन्यु ही है। बुरे काम पे क्रोध करेंगे तो वो एक वृत्ति ऐसी भयंकर बनेगी कि नियंत्रण ही नहीं रहेगा। निर्वचन तक है ना विचित्ते, वो तो ये आपके और हमारे लिए है सबके, बाकी जो मूर्ख लोग हैं वो तो करते ही क्रोध है, उनको तो मरना ही क्रोध से, पैदा ही क्रोध से हुआ है, वो तो जीवन भर उनका ऐसे ही रहेगा। वो तो हुए इसलिए है, सामान्य जन जो है, मूर्ख व्यक्ति जो है जीवन भर क्रोध करेगा, पिटेगा, रोएगा, और पैदा भी इसलिए होता, पिछले जन्म में भी सारे पाप किए हुए थे, हमारा आप सब उसी में है, नहीं तो मोक्ष हो जाता, और इसी जन्म में भी करेंगे तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? महर्षि दयानंद कहते हैं कि एक तो दूध मांगता है तो सोने के कटोरे में सिक्के में उबला हुआ दूध बढ़िया शहद वह डाल के मिलता है, और एक दूध मांगता है तो थप्पड़ मिलता है। किसको? जो कंजोर आदि के घर में पैदा होते हैं, होता ही नहीं, तो ये कर्मों का तो फल है ही, उनके प्रति हमारी अच्छी भावना होनी चाहिए, पर कर्मों का तो फल है ही, तो ये किसको हुआ? तो वही है, तो ये तो बीमारी है। कोई बीमार होना चाहता है तो ये उसके सरल उपाय है। आघृणे संसचा वही, आगे ये कह रहे हैं कि आघृणे, आघृणे का अर्थ क्या किया था इन्होंने? क्रोध या दीप्ति, उसमें हम क्या करें? संसेवा महि, तो उसके आने के बाद जो दीप्ति आ गई है तो संसेवा वही सेवा करें। तो क्रोध में सेवा कैसी होती है? इसका मतलब यहाँ क्रोध नहीं, क्रोध में तो सेवा नहीं हो सकती। क्यों जी श्रीधर जी? क्रोध में सेवा होती है क्या? किसी को भयंकर क्रोध आ गया, हाथ में डंडा है, तो क्या सेवा करेगा? तो कैसे? क्षत्रिय ये लोग क्रोध नहीं करते, क्रोध में तो हथियार अपने आप ही मार लेगा, क्रोध तो करते हैं वो जब एक दूसरे को गोली मार देते हैं। सेना में भी कई बार ऐसा होता है ना कि अधिकारी को मार दिया, वो खुद छुट्टी नहीं मिल रही, उससे दुखी हो गए, इसकी भी छुट्टी कर देता हूँ, तो ये है वो। क्रोध में सेवा हो ही नहीं सकती, युद्ध में बुद्धि पे नियंत्रण चाहिए, युद्ध अधिकतर बुद्धि से जीता जाता है। आपको आज तक जितने भी युद्ध जीते गए हैं वो बुद्धि से जीते गए, नहीं तो 6000 लोग 99000 लोगों को सरेंडर नहीं करा सकते थे, बुद्धि से जीता गया था ना। क्योंकि ऐसे दिखा दिया चारों तरफ, पता नहीं कितने सैनिक, इधर भी हथियार इधर भी हथियार, ये भी वो भी सारा ऐसे बीच में घेरा कि कहां पकड़े जा सकते हैं, ऐसी घाटी में कहां पकड़ना है, वो सारी योजना बना के काम किया। तो 6000 लोग थे उस काल में मोर्चे पे जैसा इतिहास, और वो कितने थे 99000, लात घूसों से मार देते इनको। तो हमेशा युद्ध भी बुद्धि से ही जीता जाता है, बिना बुद्धि के कुछ नहीं होता। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि भाई कुछ ना मिले निर्बुद्धेस्तु कुतः बलम्। एक बहुत भारी हाथी है, उसको पता लग जाए कि कमजोर सा व्यक्ति मुझे नचारा है तो क्या करेगा उसका वो, और बुद्धि कितनी है उसमें कमजोर व्यक्ति में। दक्षिण भारत में जो बैठे होते हैं प्राय सूखे सूखे से होते हैं, कई बार हाथी पे देखे है ना, मंदिरों में जो रहते हैं पुजारी आदि तपस्या करते हैं, तो वो उस हाथी को अपने अनुसार चलाते हैं। हाथी सर्कस में फुटबॉल खेलता है एक बुद्धिमान व्यक्ति के इशारे पे। शेर जो जंगल का राजा है वो नृत्य करता है किसके, एक बुद्धिमान व्यक्ति के इशारे पे। तो बुद्धि की महत्ता है, बल्कि बुद्धि की महत्ता है। तो और बुद्धि पवित्र बुद्धि, उनकी तो बुद्धि पवित्र नहीं है, पवित्र बुद्धि जिसके पास होगी क्या उसको संसार में कोई चीज अलभ्य है, और साथ में शास्त्र का ज्ञान भी हो तो इसलिए मंत्र में वही बात की गई है कि आ घृणे सं सचावाही। तो हम यदि हमें दीप्ति प्राप्त हो गई है, प्रकाश प्राप्त हो गया, तो हम सेवा में उसको लगाएं। और सेवा क्या है जी, सेवा कस्मात, सेवा कस्मात, आप कहते हैं भाई हम सेवा करते हैं, तो सेवा कस्मात, जिसको आप करते हैं उसको तो पता होना चाहिए वो है क्या। सेवा को सेवा क्यों कहते हैं भाई, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक की भाषा इसलिए है कि उसके शब्द के अंदर ही अर्थ है। सर्विस कस्मात, सर्विस ही सर्विस, अंग्रेजी वाले नहीं बता सकते। सेवा कस्मात, यदि आप नहीं बताएंगे तो आप भी उनके बराबर ही हैं। सेवा क्या है, क्यों करनी चाहिए, वो है क्या। शिव तंतु, अब इसका निर्वचन करो चंद्रगुप्त जी, ये तंतु संतान क्या है,
जोड़ा।
हाँ, एक धागा है दूसरे से जोड़ा, दूसरे जोड़ दिया, ये क्या बन गए, धागों का समुदाय। तो ये क्या है, तंतु संतान है। कितने बड़े बड़े थान बन गए, किससे बन गए, सेवा से। संगठन कैसे बना, महर्षि दयानंद अकेले ही थे और आर्य समाज नाम का संगठन बनाया, सेवा की, तो क्या हो गया, विस्तार हो गया, आज 32 देशों में आर्य समाज है। तो ये जो है इसको जब तक, तो इसलिए सेवा कभी भी हानि नहीं करती, लाभ ही करती है। कार्यों का विस्तार किया नहीं किया, जब सेवा की तो मन का भी विस्तार किया, शरीर का भी हुआ, बुद्धि का प्रयोग के बिना सेवा भी नहीं होती। नहीं तो फिर क्या होती है, राजा की सेवा बंदर कर रहा था तो कैसे सेवा की भाई। एक राजा ने एक बंदर पाला और हमेशा वो उसकी सेवा करे, आगे पीछे घूमे। तो एक दिन राजा सो रहे थे, बंदर जी अपना बैठे हुए थे, राजा अपना तलवार लेके सोते हैं पास में रखे। तो बंदर ने सोचा एक मक्खी बार बार राजा की नाक पे आके बैठ रही है, तो बंदर ने सोचा तो क्या था कि लाभ देना कि मक्खी राजा को तंग ना करे, निद्रा में बाधा ना करे, पर सेवा कैसे की, तलवार से की, तो राजा की नाक काट दी। तो सेवा मतलब बिना बुद्धि के नहीं हो सकती। दूसरा तत्कारी च तद्वेषी भवान, इसका क्या अर्थ है कश्यप जी। नहीं सीधा अर्थ मत बताओ, इसका अर्थ घटा के, नहीं नहीं वो आप, वो आप उसको बता रहे हैं, सन्निपात लक्षण और विधिर निमित्त तद विघात से। हाँ तत्कारी चे तद्वेषी भाव, ये जीवन जीने का विज्ञान है। तत्कारी तम करोति इति, तत्कार तत्कार स्थिति, तत्कारी चे तद्वेषी तमेव दृष्टि। आचार्य ने कार्य बताया, संस्था का कार्य आया, पढ़ने का कार्य बताया, लिखने का बताया, सेवा का बताया आश्रम की, और अरे भाई जब देखो कार्य बताते रहते हैं, कार्य तो करना है। अरे भाई मेरे कोई ज्यादा कार्य बताते हैं, जो सेवा ज्यादा करता है उसी को ज्यादा कार्य बताते हैं, टेढ़े को कोई कार्य भी नहीं बताता ऐसा होता है वैसे। तो अब क्या हुआ, तत्कारी चे तद्वेषी, कार्य तो करना है, नियम है, पर उसी कार्य से क्या कर रहे हैं, द्वेष। तो तंतु का संतान हो या विनाश हुआ, आपके मन में ईर्ष्या ही कार्य के प्रति द्वेष। कार्य तो करना है तो क्यों नहीं हंस के करो, ये जीवन जीने का तरीका है। तो इसलिए सेवा यानी विकास यानी तंतु विस्तार, इसी को सेवा कहते हैं। बिना निर्वचन के बातें धातु प्रत्यय के पता नहीं लगता। जैसे सेवा को सेवा क्यों कहते हैं, सब हम कहते हैं सेवा कर रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई सेवा करो सब, पर वो सेवा है क्या? विदेशी कंपनी को लाके देश की सेवा जाएगी क्या? तंतु का विस्तार किसका होगा? पैसा सारा विदेश में ले जाएंगे उनका होगा, हमारा विनाश क्या होगा? हमारा सारा पैसा लूट के विदेश चला जाएगा। यहाँ के उद्योगपतियों को कहें कि भाई अंबानी है, दूसरे लोग है कि आप, सरकार छूट देगी, आप लगाओ कंपनी हर चीज की, है ना। वैज्ञानिकों को विदेश में जो हमारे बैठे आह्वान करें कि अच्छा पैसा देंगे आओ राष्ट्र की सेवा के लिए, वो सेवा होगी। विदेशी कंपनियों के आने से यहाँ देश की सेवा नहीं होगी, सेवा विदेश की होगी, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि तंतु का विस्तार हमारा नहीं हो रहा है, हमारा तो विनाश हो रहा है, प्रदूषण यहाँ फैलेगा, सारा पानी हमारा वो प्रयोग करेंगे, और सारी जो कमाई होगी एक बार तो पैसा लगाएंगे, वो भी सरकार उनको लोन लोन दे देती है, बहुत छूट दे देती है, फिर सारा पैसा कहाँ जाता है? तो हम गरीब होंगे अमीर होंगे, विस्तार किसका होगा? हमारा तो विनाश होगा। तो तंतु विस्तार सेवा को जानना पड़ेगा कि ये सेवा क्या है, इसके बिना नहीं होता। इसलिए जिस कार्य को करें उससे प्रेम करें, द्वेष ना करें, जीवन विज्ञान है, वेद इसी बात को कहता है। तो आपकी आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक उन्नति होगी, और चिड़के काम को करेंगे तो बुद्धि कम हो जाएगी, ईर्ष्या द्वेष होगी और आसुरी शक्ति मन में पैदा हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए सेवा शब्द को भी समझना चाहिए। तो वही कह रहे हैं आघृणे संसचा वहि, जब हमारे मन में बुद्धि में प्रकाश हो जाए या हमें मन्यु पैदा हो जाए तो हम क्या करें, सेवा करें, सेवा का कार्य ले लें। और आगे चलें, पृथु ज्रया, इसका क्या अर्थ है? ज्री गतव धातु है, कहाँ की है? ज्री धातु है, एक तो जी सोत्रो धातु है, एक ज्री धातु है, उससे ज्रया बना है, जी अभी बने, ज्री धातु है, ज्री जी। तो ये गति अर्थ में धातु है। तो ये क्या कह रहा है? पृथु जरिया, पृथु विस्तृता जरिया गतिरियस्य, जिसकी गति बहुत अधिक महान है। सबसे अधिक गति किसकी महान है? क्या जेट विमान की है? क्या अभी जो हमने उपग्रह से वहां भेजा है वो एक साल में जो पहुंचा, क्या उसकी गति महान थी? तो सबसे बड़ी गति किसकी है उस पदार्थ की, यहाँ चर्चा है, वो है इंद्र। इंद्र की गति जितने भी पदार्थ हैं सब में तीव्र है। इंद्र एक वैज्ञानिक पदार्थ है, उसकी गति इतनी तीव्र है कि उससे बड़ी गति किसी की भी नहीं है। इतनी तीव्र गति है कि वो खरबों टन द्रव्यमान को एक सेकंड में खा जाता है। तो आप समझो कि कितनी तीव्र गति होगी। क्यों जी? यहाँ कल्पना कीजिए कि ज्यादा एक खरब टन यहाँ समान रखा हुआ, एक सेकंड में कौन खा जाएगा उसको? जो उसके प्रत्येक अवयव में पहुंचने का, ध्यान देने की बात है, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, तो उसके प्रत्येक अवयव में वो पहुंचा तभी खा पाएगा। अगर आपने रोटी चारों तरफ रखी और उसको नहीं चबा के खाया तो खाना कैसे होगा? तो खरबों टन समान के लिए कितनी लंबी चौड़ी जगह होगी, और उसको अगर हम वेद की भाषा में कहें तो वो सेकंड से भी कम आएगा। जो विकला है वो हमारी अंतिम गणना से पहली जो स्थूल गणना करते हैं वो विकला है, तो वो समझो कि 2.5 सेकंड के आसपास की एक बनेगी, तो इतने में खा जाता है वो। तो उसी के बारे में चर्चा, जो सूर्य की घटना है ना, सूर्य के अंदर क्या हो रहा है, कितनी बार बताया मैंने, अब देखते हैं किसको याद है, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा ये घटना किसकी है। श्रीधर जी, सूर्य क्या है आधुनिक के बिना? प्राचीन वेद क्या मानता है सूर्य है क्या? वेद के अनुसार पैदा हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्या क्या घटना हुई जब सूर्य जुड़ा? वहाँ कौन चीजों को जला रहा है? वहाँ ये प्रकाश यहाँ तक कैसे आ रहा है? रश्मि द्वारा आ रहा है, वहाँ क्या घटना हो रही है? फिर तो फिर उसके बाद क्या, ये रश्मियां सबसे पहले कैसे आई पृथ्वी के ऊपर? पहले तो सब अंधेरा था, भयंकर कुछ नहीं था। मंत्र क्या है वो? हाँ इनको बताने दो। हाँ यमेन दत्तम अस्य को अर्थ है बोलो मंत्र तो ठीक बोल रहे। यमेन दत्तम यम के द्वारा दिया गया अर्थात यम ने सूर्य का निर्माण किया और त्रित हाँ जी
यमेन दत्तम
अध्यतिष्ठत। यहाँ रुक जाइए तो सूर्य में प्रकाश कैसे पैदा हो रहा है अब इसको घटा के बताइए। एक मंत्र और है महर्षि दयानंद की व्याख्या सहित यजुर्वेद के 9वें अध्याय का 3रा मंत्र है।
सबसे पहले कि यम ने इसको दिया इसके बाद क्या हुआ कि इंद्र ने सबसे पहले आपके इसमें इंद्र बैठा।
इंद्र क्या है?
इंद्र एक पदार्थ
क्या करता है?
इंद्र इसका संरक्षण करता था
तो यम ने इसका निर्माण में सहयोग किया। त्रित एनम आयुनक चंद्रगुप्त जी इसका क्या अर्थ है? त्रित एनम आयुनक जल्दी बोलो। एनम आयुनक इसको स्थिर किया। ये जब पदार्थ पास पास में थे जब हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे एक बार ध्यान से पुनः सुनो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं दो बार ये बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या था? हिरण्यगर्भ मंत्र बोलिए। हम इस मंत्र को बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का दूसरा मंत्र है। महर्षि दयानंद ने जो अर्थ किया वो तो आध्यात्मिक है। महर्षि दयानंद ने कहा कि अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं। निरुक्तकार भी आगे कहने वाले हैं एक बार दिखा भी दिया है। तो ये तो इसका हो गया आध्यात्मिक अर्थ जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वो उनके लिए। अब जो वैज्ञानिक लोग हैं जो अभी ईश्वर को अंतिम पदार्थ के रूप में देख रहे हैं कि पहले प्रकृति को भी देख लें पहले परमाणु को भी देख लें पहले जितने भी वायुमंडल है इसको भी देख लें उसके बाद क्रम से वैसे योग दर्शन के अनुसार भी समाधि क्रम से ही लगेगी पहले परमाणुओं का साक्षात्कार ही होगा। तो उनके लिए इसका अर्थ क्या होगा? अगर किसी वैज्ञानिक व्यक्ति को समझाना है कि सारा संसार किस पदार्थ में बना कैसे बना उसके अनुसार इसका अर्थ क्या होगा? वैज्ञानिक तो कहेंगे आप हमें तो विज्ञान का अर्थ बताओ ईश्वर का अर्थ हम बाद में देखेंगे तब आप क्या समझाएंगे इसको बताओ। कश्यप जी आप तो थे नहीं थे ना शायद कक्षा में जब चर्चा हुई। मैं कितनी बार तो व्याख्या की है हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे इसका क्या अर्थ है इस पंक्ति का? हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तत सबसे पहले कौन था जब ना सूर्य था ना चंद्रमा था कुछ भी नहीं था सबसे पहले कौन था? समवर्तत अग्रे अग्रे नाम है आरंभ है सबसे पहले हिरण्यगर्भ था और वो किस रूप में था? भूतस्य जात पतिरेकासी भूतस्य जात जात नाम है उस काल में वो उत्पन्न हो चुका था और भूतस्य प्राणी मात्रस्य भूत का अर्थ पांच भूत भी हैं उसमें सूर्य चंद्रमा ये पांच पदार्थ बने हैं अग्नि जलवायु आकाश पृथ्वी। पति पति नाम है पाति रक्षति थी पति स्वामी एक है आसित दूसरा नहीं था अर्थात उस काल में केवल ये हिरण्यगर्भ ही था। इसके अंदर सूर्य भी बन रहे था इसके अंदर चंद्रमा भी बन रहा था चंद्रमा छोड़ दो चंद्रमा तो पृथ्वी से निकला है इसके अंदर जितने लोक लोकांतर दिखाई देते हैं जितने और ग्रह दिखाई देते हैं उपग्रह को छोड़ दीजिए वो सब इसके अंदर निर्माण हो रहे थे। यानी प्रकृति से जो महतत्व बना ये तो एक दूसरे रूप में है मतलब इसकी व्याख्या भी हम कभी करें। जो प्रकृति से महतत्व बना महत से अहंकार बना ये एक विधि दूसरी है उसमें ना इंद्र आता है ना उसमें सूर्य आता है ना कुछ आता है वो एक आध्यात्मिक दृष्टि की वहां विधि है वैज्ञानिक दृष्टि ये है। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत एक एव आसीत ध्यान देने की बात है उस काल में दूसरी कोई चीज नहीं थी। सदाधार अस्य को अर्थ स एव हिरण्यगर्भ दाधारा दाधारा नाम है धृतवान सदाधार पृथ्वी, पृथ्वी उसके अंदर थी, अपने अंदर जैसे माता के उधर में शिशु होता है वैसे उसने अपने अंदर उसको किसने सदाधारक का हिरण्यगर्भ। द्याम पृथ्वी उत द्याम, द्याम नाम है, द्याम में कौन रहता है सूर्य, आदित्य लोक को भी उसने अपने अंदर। यहां तक अर्थ समझ में आया, क्या समझ में आया? हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिर एक, एक शब्द पर ध्यान देना, एकाकी एवासी द्वितीय उस तस्मिन काले किमपि न आसीत, उस काल में दूसरी कोई भी वस्तु नहीं थी। ये उस घटना को बता रहे हैं जब परमाणुओं का समुदाय इकट्ठा होके हिरण्यगर्भ नाम का एक अंडा बन गया था और उसके अंदर इन सब का निर्माण ईश्वर कर रहा था। ये उस अवस्था को मंत्र कहता है, मतलब ना सूर्य था ना पृथ्वी थी ना चंद्रमा था, कुछ भी नहीं था। आप और हमारी तो कोई बात ही नहीं, हम तो सबको बनने के बाद आए। तो उस काल में क्या घटना थी ये कौन बताएगा वेद को छोड़ के? वैज्ञानिक तो बता ही नहीं सकते। आज जीवन लगे रहे 50 मशीन और उसकी खड़ी कर ले जो कर रखी है वहां स्विट्जरलैंड में, उनके पुरुषार्थ को तो धन्यवाद है क्योंकि वो बहुत अधिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम लोगों ने आर्यों ने यदि आरंभ में महर्षि दयानंद के बाद में इतना पुरुषार्थ किया होता वेदों के लिए तो आज वो मशीने की भी जरूरत नहीं पड़ती और संसार में हम ही होते, क्योंकि वेद में हर चीज की समस्या का समाधान। तो अब वो एक समस्या है कि मूल तत्व क्या था उसी को खोज रहे हैं और यहाँ हर चीज को खोला। हमें लाभ कैसे है? हमारे पास ज्ञान तो है, प्रयोग करना है बस। सैद्धांतिक ज्ञान जितना संसार में आज हमें है क्या दुनिया में किसी को है? किसी और समुदाय को है आर्य समाज को छोड़ के? परमाणुओं का भी जितना हमें ज्ञान है मूल तत्व किसी को नहीं है, वैज्ञानिक को भी नहीं, वो तो भटक रहे हैं। वो तो क्या कहते हैं, पहले अमीबा था फिर ये था फिर बंदर से आए। वैसे ठीक ही कहते हैं, उनके पूर्वज बंदर हो सकते हैं, हमारे तो ऋषि मुनि थे, है ना। वो कहते हैं कि हम बंदर से आए, तो संसार को कितना बड़ा एक असत ज्ञान उन्होंने दिया है। और हम, हमारे ऋषि क्या कहते हैं, हम तो मनुष्य पैदा हुए, बंदर बंदर है और मनुष्य मनुष्य है। तो उन वो तो वहां तक भटके हुए हैं, तो उनकी बात पर हम क्यों विश्वास कर लें? और आगे चलते हैं, सदाधार पृथ्वी द्याम उत कस्मै देवाय हविषा विधेय, अस्य को अर्थ कस्मै देवाय। ये कस्मै कि आर्यों को कुछ लोग आक्षेप करते हैं, मेरे को भी थोड़ी देर के लिए मान लिया आपसे उत्तर लेना है। कस्मै देवाय हविषा विधेय में कहते हैं भाई आर्यों को अपने देवता का भी नहीं पता, पूछ रहे हैं कि कौन से देवता के लिए हविदे, अर्थ तो ये निकल रहा संस्कृत से सामान्य कस्मै देवाय। कस्मै किस देवता के लिए, जिसका पता नहीं उसी को तो पूछते हैं कस्मै, तो तस्मै नहीं है कस्मै है। तो कौन से देवता को हवि दें, ये करते हैं जो आक्षेप करने वाले हैं मंत्रों में, कहते हैं कि आपको तो अपने देवता का ही नहीं पता, इसका मतलब आपको मंत्र के अर्थ का भी नहीं पता। जब मंत्र ये बात को कह रहा है कि मंत्र को ही नहीं पता कि हवि किसको देनी है, कस्मै देवाय हविषा विधेय। हाँ, अब जब शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो पता लगेगा कै कौन है, कहा वही प्रजापति और हिरण्यगर्भ है वही प्रजापति। अब पता लग गया कि हिरण्यगर्भ कौन है, प्रजापति है। तो प्रजापति कौन है, हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ कौन है, प्रजापति, और प्रजापति स्वामी वो हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ है अकस्मात निर्वचन के बिना अर्थ पता नहीं लगेगा। हिरण्यगर्भ कस्मात विक्रमोदय शब्द से तो आपने बता दिया, मैं निर्वचन पूछ रहा हूं। हिरण्य कस्मात आवृत्ति होती रहेगी तो हमेशा पक्का हो जाएगा, नहीं तो क्या पढ़ा था 5-7 महीने में, अंतरिक्ष देश शब्द तो आकाश में चला जाएगा, पर जाए तो पर वो संस्कार बना के जाएगा, रुकेगा तो फिर भी नहीं, पर संस्कार बना के जाए उसका लाभ है। तो अब देखिए हिरण्य कस्मात हिरियते आयम्यमानम, हिरियते हृदय रमणम हित रमणम हिरियते इति प्रेप्सा कर्मण। ये 5-6 निर्वचन हिरण्य यानी सोने के हैं, सोना ही अपना बता रहा है कि मैं क्या करता हूं। हृदय रमणम, अगर हृदय में कोई समस्या आ गई तो सोना खाओ, सोने की माला पहनो, सोने के बर्तनों में दूध उबाल के पियो, है ना, या सोने का सिक्का डाल के करो तो हृदय रोग ठीक हो जाएगा। शब्द अपने अर्थ को क्या कह रहा है, हृदय रमणम भवती थी, मतलब हमारे यहाँ तो शब्द ही अपने अर्थ को कह रहा है, पूछना नहीं है किसी से। भूगोल, इनको तो अब 200-300 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे यहाँ तो 17 लाख वर्ष पूर्व का जो सूर्य सिद्धांत है उसमें एक अध्याय है भूगोल अध्याय, तो पृथ्वी गोल है। इसका क्या अर्थ है, भू नाम है, कितने नाम है पृथ्वी के, कौन कौन से, भू शब्द है उसमें, और गोल तो गोल है ये, भू नाम है भूमि, भूमि कैसी है, गोल है, जो इनको कुछ वर्षों पहले पता लगा। तो हमारे यहाँ तो शब्द अपने अर्थ को स्वयं कह रहा है। हाँ, भूगोल अध्याय है, कौन सी धातु से बना गोल, अब आप करो इसका निर्वचन, गाम लातीति गोल, जो किरणों को लाने वाले जो है वो गोल है, गो मतलब गौ, ताम लातीति गोल, जो किरणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है उसका नाम भूगोल, वो पृथ्वी। गुल धातु नहीं है,
इसलिए कैसे निकला कि
गोल, वही तो है ना, गोल अर्थ उसी को कह रहा है, गति जहां है वो गोल के बिना हो ही नहीं सकती। गच्छति थी धातु लगाओ, गमेर दो, गम धातु की शर्त में, हाँ है ना, तो जहां जान गमन है, जहां गमन है वहां गोलता है ही, और गमन इसमें है, इसलिए यही नहीं सारे ऐसे ही हैं। है हाँ, ये भी ठीक है, ये भी कह रहे, जब मौलाना को हम संस्कृत से सिद्ध कर लेते हैं तो इसको समस्या क्या है, कौन सा बताया, नहीं नहीं सर गलत है, उनादि का प्रत्यय डिया डोल भी डोलाना, और मी धातु से साध लिए मिया मोल भी मोलाना, ऐसा होना चाहिए, और बिल्कुल ठीक है, मी हिंसायाम हिनस्तिति मोलाना, वही काम कर रहा है, उनका काम ही मारने का मरवाने का है, तो मोलाना हो गया, और मिया भी वही है, मोलाना भी वही है। तो हमारे यहाँ तो संस्कृत इतनी संक्षिप्त नहीं है, हर कोई चीज का अर्थ निकाला जा सकता है। और आगे चलें तो पृथु, अब ये समझ में आ गया ना वैज्ञानिक अर्थ क्या है, सबसे पहले क्या था, हमें किसी वैज्ञानिक से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई बताओ संसार बनने से पहले क्या अवस्था थी, हम सब वैज्ञानिकों को बताएं, उनसे क्यों पूछें, वो भटक वो रहे हैं, हम नहीं भटक रहे, भटकता हुआ व्यक्ति हमारे पास आएगा, चल के नहीं आएगा तो जबरदस्ती पकड़ेंगे कि आपको यहाँ दोष है, ये ठीक करो, क्योंकि तो करना पड़ता है अज्ञानी व्यक्ति, नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा, उनको वहीं जाके चुनौती देंगे कि वेद का विज्ञान महान है, शास्त्रार्थ करो, नहीं है तो, और आप में ये दोष है, इसको वेद ठीक कर सकता है, अपने आप तो भटकते रहोगे, नहीं तो अपने आप को आज भी पढ़ने पढ़ाने में बंदर वाला ही चल रहा है सिस्टम, वही है, वर्षों तक तो बंदर वाला ही रहा ना, नहीं नया दर्शन नहीं है इनके पास, ये ध्यान रखना, पढ़ने पढ़ाने में अभी भी वही है कि बंदर से ही आए हम, हाँ तो फिर पाठ्यक्रम में है तो मतलब मान रहे, अभी इनके पास विकल्प नहीं, हम विकल्प दे सकते हैं कि हम ऋषियों की संतान है, ऐसा तो लगता होगा ना जयदेव जी कि ऋषियों का डीएनए हमारे शरीर में घूम रहा है, फिर आलस्य प्रमाद, और ये कहाँ, खून तो ऋषियों का होगा ना, कभी ऋषि भी बने होंगे, ओहो भाई तीन कारण है, ये तो सामान्य चीजें समझ ली होंगी आपने, संसार में कार्य कारण समझते हैं आप, क्या है कार्य और कारण, कार्य क्या है जी, ये तो दर्शनों का विषय, इसमें ज्यादा ना जाए तो, कार्य क्या है, चंद्रगुप्त जी अभी नए नए दर्शनाचार्य बन के आए, कार्य क्या है, हिरण्यगर्भ कार्य है या कारण है,
हिरण्यगर्भ कार्य, कार्य
कारण नहीं, दोनों है,
दोनों
कैसे हैं, क्योंकि ये उनका तो कारण है जो बन रहे हैं, और ये कार्य किसका है, परमाणुओं का मेल मिलन का, तो कारण और कार्य केवल एक नहीं दोनों होते हैं, किंतु ये उसमें नहीं घटते जो नित्य चीजें हैं, ईश्वर जी और प्रकृति, उसमें नहीं घटेंगे। बाकी जितने भी पदार्थ बने, कहीं वो कार्य है और कहीं कारण है। तो वो कार्य है और उसका कारण तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन कारण होते हैं किसी भी संसार की उत्पत्ति के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए तीन। पहला है निमित्त कारण, बिना उसके कोई बन ही नहीं सकता, यानी मोटी भाषा में कहें तो कर्ता। एक है उपादान कारण, वो तो बाद वाले हैं, हम तो मोटी भाषा में कर रहे हैं अभी, गहन दार्शनिकता में नहीं जा रहे। उसके बाद है कौन सा कारण है? उपादान, अर्थात कोई पदार्थ नहीं है तो भी पदार्थ नहीं बन सकता, बनाने वाला बैठ रहा है कोने में, पदार्थ नहीं बन रहा है। प्रधान कर्ता हमेशा ही मुख्य होता है, किसी भी क्रिया में कर्ता स्वतंत्र है और स्वतंत्र हमेशा मुख्य होता है, बाकी सब परतंत्र होते हैं। प्रकृति अपने आप नहीं बन सकती। और आगे चलें, दूसरा है साधारण कारण, तीसरा। तो साधारण कारण में अनेक विभाग हैं कि जैसे ये इसका साधारण कारण क्या होगा, जो डाई वाई इसका मॉडल वॉडल बनाने के लिए होगा। दूसरा उसमें लगा लें जिसके लिए वो बनता है, वो भी साधारण कारण है। साधारण अकस्मात, बिना इसके जाने पता नहीं होगा। साधारण, साधारणम एक शब्द, तो साधारणम अकस्मात, तभी वो जीवात्मा में घटेगा, नहीं तो घटेगा नहीं। हाँ, धारणे न सह वर्तते इति साधारण, और साधारणस्य भावे कर्मो वा साधारण। तो उसकी जो क्रिया होंगी जिसके लिए बना, जो इसको धारण करेगा प्रकृति से जो पदार्थ बने, इसलिए जीवात्मा क्या है? साधारण कारण, बिना निरोध नहीं। ईश्वर साधारण नहीं, ईश्वर इसको धारण नहीं करता है, उसका भोग नहीं करता है। नहीं, ये जीवात एक ही भूया जीवात्मा नहीं करता, सह को से आदेश हुआ है। जीवात्मा इसको पृथ्वी को धारण नहीं कर रहा है, जीवात्मा द्युलोक को धारण नहीं कर रहा है।
धारण जो सबको धारण कर रहा है या जो समय धारण हो रहा है
तो जीवात्मा है, सभी जीवात्मा सबको। परमात्मा तो निमित्त कारण है, निमित्तम कस्मात, वो समझ में आ जाएगा। परमात्मा मेरे दोनों में निमित्तम कस्मात, निर्मिमित अस्मात, जिससे वो अलग हुई है प्रकृति, इसलिए परमात्मा निमित्त कर अस्मात, पंचमी बोला अपने। और ध्रुमा पाए पादानम है निमित्त, निमित्त अकस्मात। भाई आपने तो अभी तो न्याय दर्शन पढ़ा है ना नया, निमित्तम तब तक समझ में नहीं आ सकता कि ईश्वर ही निमित्त कारण बन सकते हैं, दूसरा बन ही नहीं सकता जब तक इस शब्द पे चिंतन नहीं करेंगे। निमित्तम कस्मात, निमित्तम किससे बना? मांग माने से कैसे बना? निमित्त कारण। चलो ये आज के लिए आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं। अब आप कुछ तो बुद्धि लगाओ ना, अभी आप दार्शनिक है, न्याय दर्शन आपने पढ़ लिया, इन्होंने पांच दर्शन पढ़े हैं, तो निमित्त कारण तो आप लोगों को बताना चाहिए मुझे वापस। तो निमित्तम कस्मात, ये तो मेरी प्रतिज्ञा रहती है ना, बिना व्याकरण के कोई चीज नहीं खुलती है, ये तो मेरी प्रतिज्ञा रहती है, जैसे अभी नहीं खुल रही। तो अब लगाइए, नहीं तो फिर ईश्वर ही निमित्त कारण क्यों है, जीवात्मा क्यों नहीं, ये पता नहीं लग सकता जब तक दोनों को निर्वचन ना किया जाए। आगे चलते हैं। तो पृथु जरया आमिनाद आयुर्दस्यो, अब सारा मैं ही बता दूंगा तो आप लोगों की बुद्धि का विकास कैसे होगा। जब दिमाग पे जोर डालते हैं तो बुद्धि खुलती है, जब जोर इन डालेंगे तो खुलेगी कैसे? दबाव में खुलती है, दबाव दो दिमाग पे। पृथु जरिया, पृथु विस्तृत है, वेग यस्य स्वयं दस्यो आमिनात, आमिना अमिनात नाम नाशयति भिनत्ति हिनस्ति आयुर्दस्यो। ये जो अत्यधिक तीव्र गति वाला जो पदार्थ है, ये दस्यु की डाकुओं की जो है ना आयु को नष्ट कर देता है, है कौन वो ये तो नहीं बताया। मंत्र क्या कह रहा है, पृथ्वी ज्रया अत्यधिक गति वाला जो पदार्थ है अमिनात नाशयति आयुर्दस्यु, दस्यु की आयु को नाश कर देता है। और दस्यु कौन है, दसु पक्ष है, जो जो क्षीण करते हैं समाज को, राष्ट्र को, परिवार को, धर्म का, जो नाश करने वाले हैं वो सारे दस्यु। ऐसे लोक में दस्यु का नाम क्या होगा, डाकू हो गया। तो ये दस्यु वेद में कौन है, वेद में दस्यु शब्द खूब आता है और लोग इसमें इतिहास निकालते हैं कि ये वेद उस काल का है जब दस्यु थे। ना मेघ के कितने नाम है, आए नहीं इसमें तो, मेघ के जो 30 नाम है उसमें तो दस्यु आए नहीं, तो फिर ये दस्यु है कौन। है तो मेघी, इसमें पाठ भेद देखो, पाठ नीचे कोई दे तो नहीं रखा, दस्यु भी पड़ा हुआ है, क्योंकि है तो मेघी। हाँ तो मेघ की आयु को नाश कर दिया, मतलब मेघ अभी और जिंदा रहता उसको विद्युत ने गिरा दिया नीचे, लोग तड़प रहे थे। वस्तुतः ये समाज का नियम, वेद के नियम के अनुसार जब तक था जब तक लोग सुखी थे। जो अराती होते हैं ना, जो कंजूस लोग हैं, जो दान नहीं देते हैं, जनता तड़प रही है, जो अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं, तो मेघ भी कंजूस बनता है, तो फिर क्या किया जाता है, विद्युत उसको तोड़ फाड़ के नीचे गिराते। लोग तो त्राही कर रहे हैं पशुओं को पीने के लिए पानी नहीं, मेघ दर्शन दे के आता है, उड़ के चला जाता है, तो फिर इंद्र जो है उसको, इसलिए अपघनंतः शास्त्र की आज्ञा है, वेद की, भाई दुष्ट लोग जो है उनको ठीक करते हुए चलो, क्योंकि लेते सारा कुछ समाज का, शराब समाज में दुनिया भर की समस्या आ रही है, अपना धन विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, तो ऐसे लोगों की पिटाई का भी वेद में वर्णन है। यथा अर्थ तो नहीं निकला है, निर्वचन तो आपने चलो लगभग ठीक किया, पर अर्थ तो नहीं निकल रहा है इस निर्वचन से। निर्निक्तम तो है जो शुद्ध है, निजिर जो धातु शुद्धि अर्थ में, जो शुद्ध है, शुद्ध तो प्रकृति भी है, वह शुद्ध कैसे है, बनने के बाद अशुद्ध होती है, हम करते हैं जब, तो निर्निक्तम नाम है शोधितम है, लगाओ अभी दिमाग, कल तक चल जाएगा, अभी नजदीक तो पहुंच गए। तो दस्यु ये नाम है, दसु पक्षय, यहाँ वेद में निर्वचन है, ध्यान देने की बात है, निर्वचन से अर्थ निकलते हैं। दसु पक्षय, जो जो क्षीण करने वाले हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। आतंकवादी सबसे बड़े क्या है, संसार समाज को क्षीण करने वाले हैं, तो जैसे वो क्षीण करते हैं तो उसको राजा का कार्य की दंड दे, वेद की आज्ञा युद्ध शत्रु की भूमि पे हो। आतंकवादी जहां कैंप पे, सेना को क्या करना चाहिए, वो तो आते रहेंगे, कैंप ही जाके नष्ट कर दे, है ना, तो जाके वहीं जाके नष्ट करे तो आतंकवादी बनने पे बंद हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो जो कर्मों को क्षीण करने वाले हैं वो उसमें कौन है, कर्मों को क्षीण कैसे कर दिया, अब किसान बेचारा हल्ले के घूम रहा है, बरसात नहीं हो रही तो किसान के कर्मों को कम कर दिया ना उसने, लोग भूखे मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, तो मेघ ही यहाँ है, तो इंद्र उसको तोड़ दे, ये आज्ञा है। और इंद्र वहां तोड़े, यहाँ राजा तोड़े, राजा नहीं तोड़े तो समाज आंदोलन करके ऐसे लोगों को ठीक करे, तो तभी हम सुखी रह सकते। दस्यु लोग जब तक रहेंगे वो कुछ ना कुछ हानि करती रहेंगे, वेद की आज्ञा है। आगे देखिए, अग्निम नरो अथर्युम शब्द आया है, अग्निम नरो दीधिदि भी अरण्यो हस्तच्युति जनयंत प्रशस्तम दूरे दृशम गृहपतिम अथर्युम। अग्निम नर है, ये मंत्र है किसका, अथर्युम शब्द का, अथर्युम कस्मात, हाँ, अग्निम अग्नि को कर्म में है, नर है, नर कौन है, कैसे मनुष्य को नर क्यों कहते हैं, ये बिचारे सारे जीवन कर्मों में ही नाचते रहते हैं, इसलिए नर है मनुष्य। अब जो गृहस्थी लोग हैं वो तो घर द्वार में और इधर उधर नौकरी में सेवा में वैसे नृत्य करते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। और जो संस्था चलाते हैं वो संस्था में उलझे रहते हैं, और जो प्रधानमंत्री आदि है वो सारे दिन नींद भी नहीं आती। उद्योगपति खूब बढ़िया खरबों रुपए कमा रहे हैं पर बेचारे डल्लभ के गद्दे पे भी नींद की गोली खा के सो रहे हैं, तो वो भी नाच रहे हैं। तो ये सारे जीवन नाचते रहते, केवल योगी इस नृत्य से बच सकता है। नहीं, नर तो है पर उससे ऊपर हो गया, देव हो गया वो, तो देवता इन नाचने वाले कर्मों से बच सकते हैं। वो ऐसे नहीं नाचता जैसे नाचते, अंदर के परमाणुओं में नाचता है। हाँ हाँ, जब देखा कि अब रूप का साक्षात्कार हो गया, अब कहाँ रूप में रुचि बचेगी, रस का साक्षात्कार हो गया, सबसे बड़ा रस मिल गया, बाहर के खाने पीने में कहाँ लगेगा वो। नाच नहीं रहा, वो परमाणु में आनंदित हो रहा है, जिसका नाम वितर्क विचार आनंद अस्मिता, जो चार बार आकार की समाधि है वो परमाणु की है, आत्मा का तो चौथे वाली है। तो अब कल्पना कीजिए, आपको पता लग गया कि मन कैसे काम करते हैं, मन का साक्षात्कार हो गया, तो ये छोटे मोटे कामों में रुचि लेंगे क्या आप, ये छोटे मोटे कर्मों में नाचेंगे क्या। हाँ, अंदर आनंद में बैठे हुए। कश्यप जी कहा है, कश्यप पश्चिम को बहुत ही अंदर की चीजों को देख रहे हैं, इसमें नहीं, इसमें लिखा हुआ आगे आएगा, कश्यप अकस्मात पश्चिम को बहुत ही, तो आप तो नाम सार्थक करेंगे अपना, तो वो अंदर की चीजों को देख रहे हैं, कहाँ है बाहर के चीजों में झंडे में, वो कहा उसमें रस में असली रस आ गया, तो वो कोई मिठाइयों के लिए थोड़ी भागेंगे, खीर वीर विशेष भोजन के लिए थोड़ी तैयारी करेंगे, आज थोड़ी डंड ज्यादा लगा लो, है ना। तो अंदर से जिसको आनंद आ गया तो नाचेंगे तो वो भी, पर वो उनका नृत्य जो होगा ना वो दूसरे प्रकार का होगा। इनका है इसी जीवन में चक्कर काटेंगे, अगले जन्म में मरेंगे फिर चक्कर काटेंगे, और इनका जो नृत्य होगा ये उससे पार जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, इसलिए इसकी बात है। अंदर के पदार्थों में उसको नृत्य कह लो, पर वो परमाणु परमाणु नाच रहा है। अगर आप देखें ना, परमाणु जो है आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार देख लो, जो त्रितय एनम आयुनक है ना, त्रितय वो क्या है, वो तो अभी ज्यादा वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की, त्रित क्या है, त्रित नाम के तीन परमाणु हैं जो हर पदार्थ में है, वही उसको जोड़ते हैं, वो वही आपके अंदर है।
ये जो है बड़े नृत्य के लिए तैयारी कर रहा है, जो दो लोग अंदर में आवाज गति से जाता है।
हाँ,
ये तो थोड़े दूर में नाचता है।
हाँ, 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 ये इन्होंने ठीक कहा। अब आप मंगल पे जाने की इच्छा हो जाए आपकी, कैसे जाएंगे
वो तो नहीं।
अब यहाँ से कल्पना की, आपने वायु देवता को नियंत्रण में कर लिया, चल भाई वायु देवता मेरे को मंगल में ले चल, देख लिया कुछ नहीं है मंगल में, सूखा सूखा पड़ा है, चलो अब दूसरी जगह चलो, ऐसे कितना आनंद आएगा। भगवान के बनाए सारे लोक लोक अंतर में घूमेगा और यही घूमेगा, तो अंतर नहीं है दोनों में,
नाश तो हो जाता है ना, दर्द तो वो ही है, नहीं
नहीं चलो बाहर की छोड़ दो, अंदर अंदर भी आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, असली है, ठीक, इन्होंने ठीक कहा, असली वही है, बाकी तो सब जो छोटे मोटे कर्म करते हैं वो नकली हैं।
ये
इवर्थ में है, फिर ठीक है, इन्होंने ठीक नहीं। अब ये बताइए, थोड़ी मोटी चीजों में पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, जब इसको जीवन व्यवहार में उतारेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं। अब ये विष्णु पता लग जाएगी शरीर के कोण से अवयव में बैठा हुआ है, इतना भारी शक्तिशाली, कोण से शीर सागर का रस पी रहा है। तो जब ये अंदर का चीज खुलेगी, इसी का नाम है मेधा। अब ये खुल गया, आधुनिक वैज्ञानिक भी, आइंस्टीन भी कहता था 5-7% प्रयोग करते हैं बुद्धि का, ये भाई 93% का कौन करेगा। जब वो 93% यदि खुल गई तो क्या होगा, क्यों जी कश्यप जी, कितनी मेधा आ जाएगी, कितना आनंद आ गया, सब चीजों का साक्षात्कार हो गया। रितंबरा तत्र, इसका क्या अर्थ है, रितंबरा तत्र, तत्र कुत्र है, रितंबरा तत्र, तत्र कुत्र, कस्मिन स्थाने, वो एक स्थान विशेष है, वैसे नहीं खुलेगा वो, व्यास भाष्य से भी नहीं खुलेगा, क्योंकि व्यास जी को पता था कि हमारे शिष्य इतने कमजोर होंगे, ऐसा तो उनको नहीं पता था, उनको पता था भाई वेद बात तो पढ़ेंगे तो खुल जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा। तो रितंबरा तत्र, रितंबरा तत्र प्रज्ञा, रितंबरा भी और प्रज्ञा भी, और तत्र साथ में किसी स्थान विशेष की चर्चा, न ऋषियों का गलत ज्ञान कभी नहीं होता। मतलब उनको तो ये है कि इतना कमजोर तो नहीं होगा, योग दर्शन का पढ़ना है, पहले व्याकरण हो जाएगा, छह अंग हो जाएंगे सारे हैं, उसके बाद में इसका नंबर आएगा। शतपथ ब्राह्मण के बाद विमान से समझ में आ जाते तो पढ़े ही होंगे, तो वहां खुल जाएगा प्रज्ञा क्या है। अब सीधे पढ़ोगे तो कैसे खुलेगा, नहीं खुलेगा, हिंदी लिखना पड़ेगा पूरे, उसको भांडना पड़ेगा उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर कुछ दिन में वो भी नहीं पता हुआ था क्या पढ़ता है। कौन हमारा तो कई कार्यक्रम चलते रहते हैं, बंद हो जाते हैं फिर समय के अभाव के कारण, चलते रहो आगे होता रहेगा। तो ये रितंबरा प्रज्ञा एक विशिष्ट शक्ति है, अगर उसको जान ले, और वो आप भी जान सकते हैं केवल 10 दिन में। और आगे चलते हैं, अग्निम नरो दीधिति भी अरण्यो, अग्निम अग्नि को नर, नर की परिभाषा होगी, वो कौन है जो कर्मों में नृत्य करते रहते हैं, कोई छोटा करता है कोई बड़ा करता है, कोई बड़ा कलाकार है कोई छोटा कलाकार है, और जो अंदर करता है वो असली नृत्य है, मन को जान लेना, रूप को जान लेना। अब आपने रूप को जान लिया तो क्या होगा, आप मेरे सामने बैठे हो, आप हमें देखेंगे, हम आपको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रूप पे आपका नियंत्रण हो गया, यही सिद्धि है। काय रूप संयमात तदग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश असंप्रयोगे अंतर्धानम उत्पद्यते, तो अंतर्धान हो जाएगा, मतलब रूप के कारण हमें दिखाई दे रहा है, और रूप का आपने कर लिया साक्षात्कार, तो आप चाहो रूप आपके नियंत्रण में, साक्षात्कार के बाद इतना तो विश्वास होगा चीजें नियंत्रण में आ जाती हैं, आपने उस पर कर लिया नियंत्रण। अब कश्यप जी बैठे हुए हैं, कहीं आ रहे जा रहे हैं, ये हमें देख रहे हैं, हमें कश्यप जी पता ही नहीं कहाँ है, है ना। अब ये संसद भवन में घूम आते हैं बिना वीजा पासपोर्ट के, प्लेन में चढ़ के कहीं घूम आते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये लिखा हुआ है, अगर मैं ऋषियों के जमाने में होता तो सामान्य विद्वान होता, और ऋषियों के अनुसार उन्होंने लिखा हुआ है, ये भी प्रतिज्ञा की हुई है, ऋषियों जो कुछ है ऋषियों के अनुसार लिखा, योग दर्शन का खंडन करके नहीं गए, इसका मतलब ऋषि दयानंद जी मानते थे। 15 साल ही तो मिले उनको, अभी तक जिंदा होते तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता, मार दिया जहर देकर। तो अग्नि मानसिक नहीं, क्रिया में है, कोई भी सिद्धि मानसिक नहीं, मानसिक तो हर किसी को जाएगी, इसको योगी बनने की जरूरत है, मैं यहाँ से उड़ के चला गया, अभी वहां बैठा हूँ रसिया में नदी के किनारे संध्या कर रहा हूँ, तो ये सिद्धि है क्या? कोई भी मानसिक, अब मानसिक तो मैं रसिया में चला गया अभी उड़ के, अब देखो मैं जब 2010 में गया था वहां संध्या कर रहा हूँ बैठ के, बढ़िया मैं आचमन कर रहा हूँ, तो क्या इसी का नाम सिद्धि है? अगर ऋषियों में मतभेद नहीं हो सकता पहली बात तो, अब उसके लिए जो ज्यादा पढ़े लिखेंगे नहीं उनके लिए महर्षि दयानंद जी, मानसिक कर लो भाई कुछ तो कल्पना करो। पुनः प्रवचन एक तो महर्षि दयानंद की कीर्ति नहीं है पहली बात, उनके साक्षात ग्रंथ में कहीं निषेध किया तो बताओ, जो उनके हाथ हस्तलिखित है। अब बाद में कितने वर्षों बाद शायद वो पुनः प्रवचन छपा है, तो पूरा प्रमाणित नहीं हो सकता। आगे चलिए जी, अग्निम नरिम दीदितिम अभी अरण्यो, अब ये कह रहे हैं अग्निम नर, नर कैसा है, नर मतलब मनुष्य, और अग्निम अग्नि को, और कैसी अग्नि को, अभी अरण्य, अभी आभिमुख्य न अरण्य अर्थात अरणि से जो उत्पन्न, अरणि में होने वाली कौन है वो अरण्य। तो अग्नि सबसे पहले कैसे पैदा हुई, सबसे पहले अग्नि कैसे पैदा हुई दुनिया का कोई वैज्ञानिक बता ही नहीं सकता। आदिकाल में सबसे पहले व्यक्ति को अग्नि कैसे पैदा की, अरणि, दो लकड़ियों को निकाला, और वो अरणि का पेड़ भी है, ध्यान रखना अरणि नाम का एक वृक्ष है, उसी की बनती है तो जल्दी पैदा होती है। हाँ, तो उसमें उसको ऐसा छीला, एक गड्ढा किया, एक जैसे माताएं दूध मतती थी पहले, अब तो मशीन मतती है, तो उसमें रखा और ऐसे खींचा, उससे अग्नि पैदा हुई, उसी को ये मंत्र बता रहा है। अर्थात सबसे पहले जो कभी अग्नि हुई वो वृक्षों से पैदा हुई, तब व्यक्ति ने जाना, वृक्ष आपस में टकराए, उसी का प्रतिनिधि है कि सबसे पहले अग्नि कैसे पैदा हुई, लकड़ियों के घर्षण से पैदा हुई। वो संकल्प अग्नि है। अब आप इस, मैं कह रहा हूं मनुष्य के बाद उत्पन्न होने की बात चल रही है, आप कर रहे हो परमाणु में जब घर्षण प्रारंभ हुआ था तब की बात कर रहे हो, तो दोनों का समन्वय ही नहीं है। अग्नि मीड़े पुरोहितम का अर्थ है परमात्मा की जो संकल्प अग्नि है, जिससे बिना परमात्मा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी बिना शक्ति के कोई काम नहीं कर सकता। तो उसने भी विचार किया कि मुझे संसार बनाना है, समय हो गया। तो जो संकल्प मात्र से जो योगी भी कर लेता है बहुत सी सिद्धि, अगर आपने पढ़ा हो योग दर्शन का तृतीय पाद, तो संकल्प मात्र से योगी के बहुत से कार्य हो जाते हैं। क्यों जी चंद्रगुप्त जी? तो ईश्वर का जब संकल्प हुआ तो अपने आप परमाणु में, उसका नाम है अग्नि, अग्रणी भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। कौन से यज्ञेन यज्ञम, उस मंत्र के अर्थ को कह रहा है, वो मंत्र उसी अर्थ को कह रहा है। तो दीदीति भी, दीदीति किस नाम में पड़ा हुआ है? अग्रु है, अण्व है, वृक्ष है, क्षिप है, शरिया रसना धीत अथर्य, किस नाम में पड़े हुए हैं? 22 नाम किसके हैं? अंगुली नामानी। तो दीदीति का क्या अर्थ है? अंगुली। और अंगुली को दीदीति क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना किसी की उंगली कट जाए तो क्या वो ठीक से काम कर सकता है? तो दीदीति कर्मों को धारण करने वाली अंगुली है, तो इसलिए इनको कहते हैं। तो और इसके बाद में हाथ से जो निकली हुई है, ये कहाँ निकली हुई है? हाथ में निकली हुई है। हाथ ना हो तो उंगली कहाँ रहेगी? हाथ क्या है? एक अंग है। उंगली क्या है? उपांग है। इसलिए वेद के 6 अंग हैं, उन 6 अंग के 6 उपांग हैं, वेद के नहीं, 6 अंग के हैं। 6 अंग हैं, ये अंग हैं, उसके अंग के ही उपांग होते हैं। अंगस्य समीपम वर्तते इति उपांग, अंग के जो समीप हैं वो कौन है? उपांग है। इसलिए जो 6 अंग हैं उनके समीप जो 6 दर्शन है, वेद के समीप नहीं, इसलिए वेद का सीधा संबंध भी नहीं।
ये तो सीधा वेद के संबंध है। वेद के हम तो बताएं
हैं,
वेद की तो हम बताएं
उपांग है वो,
नहीं वेद के जो अंग छह बताए ना, अब बोले ना तो उसके उपांग में तो वेद की उपांग हो जाएगी किसी तो वेद के अंग वो हो रहे हैं
व्यंजना से होंगे, अभिधा से नहीं। सीधा अर्थ तो है अंग के जो समीप है, ये मैंने उदाहरण दिया, ये हाथ है, ये शरीर का एक अंग है। उंगलियां किसका अंग है? इस हाथ का, मतलब उपांग हो गई। ऐसे ही वो भी अच्छे। तो जनयंत प्रशस्तम, तो जनयंत नाम है उत्पादयंत, प्रशस्तम नाम है सम्यक। अयम प्रशस्त ऐसे तो नहीं है, अयम प्रशस्त अतिशयन प्रशस्त प्रशस्तम ऐसे तो नहीं है ना। तो कैसे हुआ? प्रशस्त का क्या अर्थ है? ये कार्य प्रशस्त है, इसका क्या अर्थ है? भाई प्रशस्त शब्द का अर्थ तो अर्थ जानकारी करो, तभी तो प्रशस्त कार्य करोगे। प्रशस्त शब्द का कितनी बार सुना पढ़ा, किंतु क्या उसका अर्थ जाना? व्याकरण लगाइए तभी अर्थ खुलेगा। प्रशस्तम नाम है सस्तम, कस्मात सस्यते अनेन इति सस्तम, सस्यते इति वा सस्तम, या तो भाव में होगा या कर्म में होगा, अथवा संसनमेव सस्तम तयोरेव कृत्यक्ता खलर्था। इस सूत्र का क्या अर्थ है? युक्त प्रत्यय है, भाव या कर्म, कर्ता में तो होंगे ही नहीं, सीधी बात हो गई। अब प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग का क्या अर्थ आया था निरुक्त में? क्या अर्थ होगा यहाँ? किसके विपरीत अर्थ में? प्रातिलोम में किसका, जो पहले बताया? हाँ अब बात खुल जाएगी ना, जो हाँ। अब प्रशस्त का क्या अर्थ हुआ पूरा? जो अरवाग अर्थ तो था इधर को आना, और जो जो व्यक्ति को उस पार ले जाने वाला है उसका क्या नाम हो गया? प्र, और प्र यानी प्रकर्ष, और सस्यते इति प्रशस्त। जो अच्छी प्रकार दूर तक ले जाने वाला जो स्तुति है उसका नाम क्या है? प्रशस्त है। क्यों जी? जो अच्छे काम करता है वो उसकी स्तुति कहां तक पहुंचती है? 17 लाख वर्ष पूर्व रामचंद्र जी की स्तुति अभी तक हम गा रहे हैं, कहां तक ले गई उनको और कहां तक आ गए जाएगी। तो ये है प्रशस्त का अर्थ। अब देखिए, अब ये बात खुल जाएगी। तो प्रशस्तम नाम है, अब क्या अर्थ हुआ प्रशस्त का निर्वचन करने के बाद में? मंत्र भी है, कार्य भी है, धर्म भी है, योग भी है, उसके द्वारा गुण, गुणों के द्वारा तो गुण की स्तुति होती है ना जी। तो ये प्रशस्त गुण का नाम जो व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है। और अथर्यम, अथर्यम का था ही अर्थ सतत गमन युक्तम, जो लगातार करता है। तो अर्थ यहां तक क्या निकला? तो इसको जनयंत उत्पादयंत प्रशस्तम श्रेष्ठतम दूरे दृशम, दूरे दृशम पहले दूर जो देखा गया उसको, और गृहपतिम अथर्यम तो अग्निम, गृहपतिम दूरे दृशम, ये सारे विशेषण हैं। अग्निम नर दीदीति भी अरण्यो जनयंत प्रशस्तम, प्रशस्तम नाम है अग्नि का ही विशेषण है, इसलिए गुण में गुणवाची है। तो अग्नि के इतने गुण हैं, अग्नि क्या है? प्रशस्त है। अग्नि क्या है? दूर दिखाई देने वाली है। अग्नि क्या है? गृह की स्वामी है। क्यों जी? घर में अग्नि ना हो तो कोई घर में रह सकता है क्या? अब गैस की अग्नि लगा लो वैसी नहीं बची, पहले तो चूल्हे की अग्नि थी। और यदि निरंतर गमन करने वाली अग्नि ना हो तो भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वो इसको आप क्या करें? जनयंत उत्पादयत इत्यर्थ है। तो ऐसी अग्नि को उत्पादित करें, तो वो कहां से? अरणी से पैदा हो, शरीर में भी अरणी है। हाँ, आप तत्व और अग्नि तत्व का निरंतर घर्षण हो रहा, उसी का नाम जठराग्नि है। जिसको जठराग्नि नहीं होती उसको भोजन नहीं पचता, जिसको भोजन नहीं पचता वो रोगी अपने आप हो जाता। हाँ हाँ, देखो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, ये भी अग्नि मंथन है। जब व्यक्ति दौड़ता है, बिल्कुल ठीक कहा, ये भी एक प्रकार का अग्नि मंथन है। हाँ ठीक बात है, ऐसी बुद्धि लगाते रहोगे तो खुल जाएंगी चीजें। अब एक जो विषय आगे आ रहा है, पहले इनके निर्वचन देख लें यास जी का। दीदितयो अंगुलयो भवन्ति धीयन्ते कर्मसु, अरणि प्रत्यरित इन अग्नि, अग्नि इसमें पहुंची हुई है। और समरणात जायते तिवा, जब अच्छी प्रकार घिसते हैं तो अग्नि पैदा होती है। हस्तच्युति हस्त प्रच्युत्या, अर्थात हस्त से ये ऐसे जब किया गया, इसका घिसा गया तब लिख लिया जनयंत प्रशस्तम, अग्नि का विशेषण है। दूरे दर्शनम, पहले तो अग्नि दूर दिखाई देती है। सबसे पहले अग्नि दूर कहाँ दिखाई दी मनुष्य को? सूर्य दिखता है आपको? देखो ध्यान की बात है, क्या सूर्य आपको दिखता है?
दिखता है।
सूर्य दिखता है आपको? कितनी दूर है यहाँ से? नहीं नहीं, यहाँ से कितनी दूर है सूर्य? और आपकी देखने की शक्ति कितनी दूर है? बहुत दूर तक है। अच्छा, तो यहाँ से जयपुर को देख के बताओ छत पे खड़े होके कि मेरा कमरा जयपुर में कहाँ है? बिल्कुल व्यवधान नहीं है, छत पे खड़े हो जाओ, कुछ भी बिल्डिंग आपको रास्ते में नहीं दिखेगी। इसलिए आप जो कहते हैं ना, आपको सूर्य दिखता है, सूर्य दिख नहीं सकता, आपकी आंखों की इतनी शक्ति नहीं कि आप सूर्य को देख ले। यही एक रहस्य, क्या दिखता है खोजो। सूर्य नहीं दिख सकता ना आपको, चंद्रमा दिख सकता है। हाँ, सूर्य नहीं दिखता, सूर्य का ग्रहण जरूर दिख सकता है। यही बात है, गौतम जी नहीं दिखते, गौतम जी की आकृति दिखती है। गौतम जी कौन है आप पता है आपको? कभी देखा आपने आपको? आप नहीं दिखाई देते। वो है गौतम जी, जिस दिन एक दिन मरेंगे लोग चार कंधों पे बांध के जला देंगे, आकृति दिखे दिखेगी ना, एक दिन राख भी उड़ेगी, हवा आएगी और सब समाप्त। गौतम नाम का व्यक्ति समाप्त। मैं यही कह रहा, सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य की आकृति दिखाई देती।
आकृति विशेष सूर्य
नहीं, आकृति विशेष सूर्य नहीं, आकृति विशेष आत्मा नहीं है, ये तो पशु में चली गई, तो पशु हो गई, क्या आत्मा पशु हो गई? आत्मा की कोई आकृति नहीं, सूर्य की कोई आकृति नहीं, कोई बात नहीं, सूर्य दिखाई देता है, कोई बात नहीं, आप देखते रहो पाठ कर लेते हैं, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, जिसको लगता है कि मैं सूर्य को देखता हूँ, हमें कोई बात नहीं, देखते रहो आप सूर्य को। अब जो आगे है, मैं तो निर्णय है कि आप सूर्य को नहीं देखते। सूर्य जो है ना, ये तीन चीजें होती है किसी भी पदार्थ की, कौन कौन सी मैं कितनी बार बता चुका हूँ, कौन कौन से एक पदार्थ की तीन चीजें हैं, परिधि, केंद्र, परिधि और दूरी। तो आपको सूर्य कौन सा दिखता है? सूर्य नहीं दिखता आपको। आगे चलते हैं कानु का। अब का हाँ, वेद पढ़ना पड़ेगा तब पूरा सूक्त खुलेगा। हाँ दिखाई देता है, है? आप लोगों को नहीं दिखाई देता, वैसे आपको दिखाई दे सकता है कि कश्यप पश्य को बहुत ही जल्दी दिखाई दे। आगे चले काणू का। अब इसकी एक बड़ी भारी घटना है काणू का, विचित्र शब्द लगता है काणू का, और सबसे पहले आक्षेप किया था एक आचार्य ने, उसका नाम था कोच। क्या आक्षेप था? अनर्थ का मंत्र। क्या आक्षेप था? क्या आक्षेप क्या था? काणू का शब्द भी था पीछे का, याद रखे है? हाँ, तद्यथा काणू का जार्याई यादृश्मिन और अम्यक, ये चार शब्द दिए थे कि इनका कोई अर्थ नहीं है, वहां यास्क जी ने इनका अर्थ नहीं बताया था, अब बता रहे हैं, क्योंकि उनको आगे बताना ही था, ये ध्यान देने की, मैं वो याद दिला रहा हूँ कि उस काल में इनका अर्थ यास्क जी ने, आपने पूछा नहीं तो मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि आगे बताने वाले थे। तो उन चार शब्दों का जो आक्षेप किया था, उसका आक्षेप का उत्तर क्या दिया था यास्क ने? पूरी व्याख्या करके बताओ, न एष अस्थान और अपराध यद एनम अंधो न पश्यति पुरुषर अपराधो स भवति तद यथा जानपदीषु विद्यातः पुरुष विशेषो भवति एवं पारोवर्य वित्सुतु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्या। अब कोई व्यक्ति जा रहा है बीच में, अंधा व्यक्ति जा रहा है, ठूंठ खड़ा हुआ है और अंधे ने उसको टक्कर मार दी और गाली ठूंठ को दी, मतलब अंधे का दोष है या ठूंठ का दोष है? और गाली किसको दे रहा है? ठूंठ को दे रहा है कि नालायक रास्ते में खड़ा हुआ था, मेरे को चोट मार दी, है ना? रास्ते को रास्ता छोड़ के नहीं खड़ा हो सकता, है ना? गलती तो अंधे की है, कुछ पाप कर्म किए थे। तो नए से अस्थान और अपराधो या देना अंधो ने पश्यती, अंधा नहीं देखता तो यह अस्थानों का दोष नहीं है। पुरुष से अपराधो, किसी को साथ में लेके चले, ये लाठी वाठी आगे घुमाता चले कहीं अड़ जाएगी। पुरुष से अपराधो से भवती तद यथा जानपदीसु विद्या से पुरुष विशेषो भवती। जानपदी का अर्थ है जनपद में होने वाली सभाएं। पहले क्या होता था, आज तो पुस्तकें ऐसी लिखी जाती है, किसी ने कोई पुस्तक लिखी, पाणिनि ने जो अपनी अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कराई, पहले ऋषियों की सभा में राज निर्णय हुआ था कि ये पुस्तक छपने लायक भी है या नहीं है। उसके बाद जब निश्चय हो गया तो वो थी जानपदी, सारे ऋषि बैठे कि भाई समाज राष्ट्र के काम की तो है, आज कोई सत्यनारायण कथा छाप लेता है, कोई ये छाप लेता है, कोई ये छाप लेता, तो अंध परंपरा, वेद के अनुसार पुस्तक है तो हजारों छापो, वो तो बहुत ज्यादा जरूरत है, पर जो पाखंड की पुस्तकें छाप दी, क्या उससे किसी का भला है? तो विद्वान निर्णय करेंगे पुस्तक पढ़ने लायक है या नहीं है। तो उनका नाम था जानपदी, तो पुरुष विशेष भवती, तो वो पुरुष जो ऋषियों का संतुष्ट कर देगा कि पुरुष समाज के लिए, वही तो माने होगा, नहीं तो ऋषि लोग छुट्टी, अभी और पढ़ पहले लिखना छोड़ो, है ना? तो पुरुष विशेष भवती एवं पारोवर्य वित्सुतु खलु वेदित्रिषु पारोवर्य पार अवर और तस्य भाव कर्म व पारोवर्य पारोवर्य वित्सु जानने वालों में, जो वेद के शिक्षा भी पढ़ाया और अंतिम धनुर्वेद भी पढ़ाया, जो संपूर्ण शिक्षा का जो पढ़ाया, पारोवर्य वित्सुतु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्या उसे बोलते, तो भूय विद्या वाला ही तो प्रशस्त होगा, और प्रशस्त क्या था अभी पता लग गया आप। तो जिसके पास ज्यादा विद्या होगी वही महान बनेगा। अब वो बेचारा थोड़ा बहुत कर्मकांडी कोषाचार्य है, वो कहता है कि मंत्र अनर्थक है, तो उस मूर्ख की बात कैसे मान ली जाए? नहीं मानी जाएगी। फिर आओ शास्त्रार्थ करो, हम बताते हैं कि वेद में क्या विज्ञान है। फिर ये चुनौती, और चुनौती कौन देगा? तो ये सारी बात है। अब उसी वो आ रहा है काणू का। अब ये इंद्र जो है ये 300 मटके सोमरस के एक साथ पी गया। 300
मटके,
हाँ
मटके,
हाँ मटके मतलब द्रोण पात्र। ये सूर्य के अंदर जो घटना हो रही है ना कि एक कितना द्रव्य वो जो एक बार में खा जाता है, जो रश्मियां जो यहाँ आ रही हैं वो कितना द्रव्य खाता है, वेद ने ये बात भी बताई है, इनको तो पता नहीं होगा, उस वो मंत्र कह रहा है। द्रोण शब्द ये मनुष्यों का द्रोण और देवताओं का द्रोण कोई सामान्य समझा गया आपने? ये बताओ कि हमारे तो 360 दिन और देवताओं का, तो हमारा और उनका द्रोण सामान्य हो गया? ये देवता का माप है हमारा आपका नहीं, ये वो द्रोण, ये जो 15 किलो का मटका है वो आपके हमारे मनुष्यों का माप है, देवताओं का माप अलग है, देवताओं के दिन भी अलग है, देवताओं का एक दिन और ब्रह्मा का एक दिन। अभी तो है 4,32,00,000,000 एक ब्रह्मा का दिन है, तो हम अपने दिन घटाने लगे उसको, तो देवताओं का नाप है, ध्यान देना चाहिए। ये नहीं है कि वो 300 को 3,000 हो गया, 150 वो हो गया, कुल मिला के 5,000-6,000 किलो खाता है एक बार में, ऐसा नहीं है, ये देवताओं का माप है, वही कह रहे हैं। अब देखिए पहले मंत्र देखिए, सूर्य में क्या घटना हो रही है वो बता रहे हैं। एकया प्रतिधा अपिबत, एक बार में प्रतिधा नाम है प्रतिगत्य धा, धारण कर लिया, अपिबत पिया साकम, साथ में सरांसी 300 बड़े बड़े जो अन्ना सागर, तो सरांसी में नहीं आता, ऐसे ऐसे ये समुद्र भी कम पड़ जाएंगे, तो इतने एक साथ में 300 पिए। सूर्य के अंदर की घटना है कि कितना सूर्य एक, यानी इंद्र जो है कितना द्रव्य एक बार में जला के वो प्रकाश आ रहा है, ये उसकी बात है। सूर्य की घटना ही है, इंद्र नाम है ना, इंद्र सूर्य में रहने वाला पदार्थ है।
ये प्रतिदिन का है,
है?
प्रतिदिन की घटना बता रहा है या कहीं साल में एक बार?
नहीं नहीं, एक बार में, मतलब एक बार का अर्थ है एक कला में, विकला में, सेकंड से भी कम हिस्से में। हाँ इसका ऋग्वेद में देखना है, 300 होना चाहिए, ऋग्वेद देखना मूल। हाँ तो त्रिन है ना जी, 300 ही है, त्रि होता नहीं, त्रिन सत कैसे होता? चलो ये देवताओं का त्रिन सत है और आपका हमारा नहीं है, तो देवताओं का त्रिन सत कितना होगा? हाँ जी, तो वेद में जो है ना 30 नहीं आता है। चलो फिर ये है कि ये आपका हमारा लोक वाला 30 मटका डाल लेना, देवताओं का है क्योंकि इंद्र ने पिया और इंद्र एक देवता है, तो देवता का द्रव्यमान है ना कि आपका और हमारा, है 30 कर लो। इंद्र वैसे तो इसका, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था कि वो रश्मियां जो है ना वो इतने प्रकार की होती हैं, मतलब इंद्र सोमस्य काणु का, और इंद्र क्या है, इंद्र सोमस्य काणु का, सोमस्य काणु का इंद्र है एकया साकम सरांसी 300 प्रतिधा अपिबत, ये इसका अन्वय होगा। तो एक बार में पीने का मतलब अपना मत समझ लेना, उसकी गति पीने में बहुत ज्यादा है। काणु का नाम जो है तीन है, एक तो गले तक पी लिया, एक तो इंद्र का विशेषण है, एक इसका सोम का विशेषण है, और एक गति का विशेषण है, क्रिया का विशेषण है। ये काणु का एक विशेषण है, गति का विशेषण है, सोम का विशेषण है, या इंद्र का विशेषण है, उसी को आगे कहेंगे। अब आगे देखिए, एकेन प्रतिधानेन अपिबत साकम सह इत्यर्थ इंद्र सोमस्य काणुका। इंद्र ने सोम की जो काणुका है, जो सोम की जो विशेष गति है वो, या इंद्र काणुका, इंद्री कौन है, काणुका है, उसने सोम के 30 जो है बड़े बड़े तालाबों को एक बार में ही पी लिया। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ध्यान देने की बात है। घटना इंद्र कहाँ रहता है वो मंत्र याद नहीं रहेगा तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। मंत्र क्या है, यमेन दत्तम त्रितयनम आयुनक इंद्र अध्यतिष्ठत। तो सूर्य के अंदर जो रहने वाली सबसे बड़ी शक्ति कौन है, वो इंद्र है। अर्थात जो सूर्य में जो ऊर्जा का दहन हो रहा है उसका नाम है आप है। ऊर्जा का नाम क्या है, आप है। आप है तत्व भरा यानी सोम। तो वो सोम इंद्र कैसे ऊर्जा पैदा कर रहा है, सूर्य में तो ऊर्जा पैदा हो रही है, करने वाला तो कोई और है, वो कौन है, इंद्र है। वो क्या पी रहा है, हाँ यही है वो, हाँ रस का रस तो आ रहा है, रस का रस तो आ रहा है। अपाम रसम उद्वैसम सूर्य संतम अपाम रस से यो रस है, वो तो जलने के बाद यहाँ आ रहा है। ऐसा है कि जब ऐसा विमान बनाएंगे पहले आपको ही भेजेंगे वहां, तो आप देखिए ना, बता देना अगर आ जाओ तो। अब वहां धुआं का क्या तात्पर्य है, वो इस गैस में धुआं नहीं उठता, वो भगवान के मुंह में धुआं कैसे उठेगा। तो ये मनुष्य का बनाया हुआ है ना, तो भगवान का बना, उसमें कालापन नहीं आता। वो अग्नि परमाणुजन अग्नि है, सामान्य अग्नि नहीं है। आगे चलो, तो वहां धुआं देखिए, कोई भी चीज जलती है तो सूक्ष्मतम रूप से वो तो रहता है। नहीं यहाँ नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पर सूक्ष्मतम हो रहा है हमारी पकड़ने की वो नहीं। जहां भी अग्नि जलती है वहां कुछ ना कुछ रेडिएशन यानी उसका प्रभाव होता ही, वो धुएं के रूप में हो या फिर परमाणु के रूप में हो, जो भी चीज जल रही है उसकी एक प्रभाव है, उसको बोलते हैं प्रभाव, अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं शायद। अच्छा, तो उसका एक वही तो सूक्ष्म किरणें, तो वही तो प्रभाव करेंगे, जब निकलेंगे तो प्रभाव कैसे करेंगे। हाँ, आगे चलें, तो सबका है वो इंद्र है सोमस्य काणुका। काणुका कस्मात, कांत कानी तिवा, तो कांत कानी काणुका, कांत कानी नाम है, कमु कांत उसे बना है, तो कांत कानी का क्या अर्थ हो गया, कमुकांता हो, तो वो इच्छा करता है कौन, इंद्र। काणुका नाम है सोमस्य, इंद्र है काणुका कस्य सोमस्य, तो सोम का इच्छु कौन है, वो इंद्र है, तो ये काणुका का अर्थ हो गया। क्रांतकानी तिवा, या फिर ये काणुका क्या है, क्रांतकानी, क्रांतकानी नाम कर्मोपाद विक्षेप है, तो इसका क्या अर्थ हुआ भाई, सरोवर भरा हुआ है, सरोवर नगर के ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा, क्योंकि वो क्रमोपाद विक्षेप है, तो वो तो सरांसी का क्या बन गया, विशेषण बन गया, सरांसी की दर से काणुका, क्रांतकानी, क्यों उनकी तरफ ही सारी चीजें जा रही है। वैदिक विज्ञान में सोम के अंदर तो भरा ही हुआ है, किंतु वो सूर्य के अंदर जो इंद्र बैठी हुई शक्ति है वो आकर्षण भी करता है आसपास से, आप तत्व को खींचता भी रहता है, और यहां से तो जा ही रहा है आप तत्व सूर्य में, वो भी है। तीसरा अर्थ है कृतकानी इतिवा, कृतकानी का क्या अर्थ है, हैं, कृतकानी का क्या अर्थ होगा बताओ, कृतकानी ऐसा कृतक वर्तते, ऐसा कार्य कृतक वर्तते, कृतकानी नाम है निर्मापितानी, कृतकानी नाम है कृतकानी। तो ये किए हुए हैं, रखे हुए हैं। आगे देखें, कृतकानी व इंद्र सोमस्य कांत इति, ये बनाए हुए हैं और इंद्र कौन है, सोमस्य कांत। पहला निर्वचन क्या हुआ, कांत, कांत नाम इच्छुक है, इंद्र क्या है, सोम का इच्छुक है, काणुका का क्या अर्थ है, इंद्र सोम को चाहता है, विशेषण हो गया। कणे घात इति वा, और इंद्र कैसे पीता है, कणे घात है, कणे हत्या पीवती, ये व्याकरण का उदाहरण है, तो उसको क्या हो जाता है, अगर मतलब आपको मिठाई से वैराग्य करना हो तो खूब पेट भर के खा लो, उल्टी उल्टी लगेंगी तो उससे द्वेष पैदा होगा, तो आपको वैराग्य हो जाएगा, हाँ श्रद्धा का प्रतिघात कर दिया जाएगा अगर वैराग्य करना है, घर वालों से भी वैराग्य करना है तो उनकी श्रद्धा का प्रतिघात कर दीजिए। हाँ, खूब रहो, बढ़िया बढ़िया चीजें मांगो, ये दो, कार्य नहीं करेंगे और ये चीज चाहेंगे, उनको भी वेद पढ़ाओ बैठा के, तो कहेंगे भाई तू ठीक है गुरुकुल में जा। हमारे पास हर चीज के तरीके हैं, जो घर वाले नहीं छोड़ते ना वो अपने आप यहाँ लेके आएंगे गुरुकुल में, यही रखो। बढ़िया में तो शुद्ध आहार करूंगा, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, 4 बजे अपना शंख बजाने लगो, मंत्र पाठ करने लगो, उनको सोने मत दो, हवन करो, वो भी देसी घी का 600 रुपए किलो वाला का लाओ, अगर घर में रखना है तो ये काम करूंगा। तो चलो गुरुकुल में जाइए, आचार्य जी आप रखिए, हम इसको नहीं रख पाएंगे, है ना। और आगे चलते, किसी को ऐसी समस्या घर वाले से तो हमारे पास तरीके हैं। तो आगे चले, तो कणे घाते इतिवा कणे हते इतिवा, या गले तक बाहर आ गया है, एक तो कणे घाते था उल्टी नहीं आई, अब ये क्या हो गया, कणे हते हो गया, तो ये इतना पी लिया कि बाहर भी
काम किया।
हाँ, अथवा कांति हते है, कांति के द्वारा ही वो प्राप्त है। सोमग में क्यों प्राप्त करना चाहते हैं लोग कि उसको पीने से, अब जैसे हमारे मुनि जी हैं, अगर इन दोनों को सोम मिल जाए तो 25 साल की अवस्था हो जाएगी, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अगर वो सोम पी ले तो ये चमड़ी उतर जाएगी, नई चमड़ी आ जाएगी, दांत गिर जाएंगे, नए आ जाएंगे, 40 दिन में नया शरीर बन जाएगा, उसी का नाम च्यवनप्राश है, च्यवन ऋषि खा के। किंतु आज जो च्यवनप्राश है, यदि च्यवन ऋषि आ गया और धोखे से इसको खा गया तो वो जवान से बूढ़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 गुना तो चीनी डालते हैं। अभी आंवला जो फाल्गुनी जो पूर्णिमा आएगी उसमें आंवले में 6 रस आते हैं, अक्टूबर से बनाना प्रारंभ कर देते हैं तो उसमें रस ही नहीं आए, 6 गुना चीनी डालेंगे और दुनिया भर की जो गली सड़ी कीड़े खाई औषधि उसमें डालेंगे और च्यवन ऋषि के नाम से बेचेंगे तो किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, दांत और गिर जाते हैं 6 गुना चीनी खा के। मैं प्रयोग कर चुका हूँ एक बार, कल्प किया, मगर देखते हैं च्यवनप्राश का कल्प करके, ऐसा कल्प हुआ कि दांत ही खराब हो गए क्योंकि इतनी 6 गुना चीनी थी और कई समस्या हो गई। किंतु मुनि जी अगर उसको कोई बनाना जाने वैसी चीजों का प्रयोग करें तो चीजें आज भी काम करती हैं, पर कोई ऐसा है नहीं, व्यापारी दृष्टि है सबकी। और आगे चलते हैं, ये पूरा ही कर ले, समय तो होने वाला है। तो अब ये क्या हो गया, कांति हत है, कांति के द्वारा हत नाम है प्राप्त है। तत्र एतद् याज्ञिक वेदयन्ते, अब याज्ञिक लोग यदि इस मंत्र को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखिए इस मकान को आके यदि कोई इंजीनियर देखेगा जो मकान बनाने का विशेष है तो कैसे देखेगा, है कितना पुराना हो गए, कितने दिन बना हो गया, कब तक चलेगा, और हम देखेंगे पश्चिम के भवती, हम तो केवल देखेंगे कि भाई बढ़िया है, पेंट वेंट है कुछ है, जरूर थोड़ी बड़ी टेढ़ वेढ़ आ गई है और ये हो गया है बस, पेंट वेंट की इसको जरूरत है, पेंट की जब एक शक्ल ही करानी चाहिए वैसे, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, तो ऐसे हम इसको देख लेंगे। उसके बाद में ऐसे ही यहाँ है, इस मंत्र को जो कर्म कांड वाला विद्वान ऋषि है वो कैसे देखेगा, वो देखेगा 63 उपपात्र हैं। उपपात्र क्या होते हैं, जिनसे आहुति दी जाती है उत्तर वेदी में, सोमयाग की ये घटना है, तो वो इसको सोमयाग की घटना में बताएगा कि भाई इंद्र कौन है, इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथिर मेष, ऐसे ऐसे मंत्र पाठ करके वो इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र आता है तो जो उक्त पात्र होते हैं कि ऐसा समझ लें कि पहले जो अपना गिलास होता था ना आधे पौन किलो का, कहाँ से कहाँ तो बचे ही नहीं, तो बड़े बूढ़े उसी में दूध पीते थे पहले, तो उसमें बस थोड़े घेरे से हो जाते हैं, वो काष्ठ का बनता है, तो उसमें सोमरस निचोड़ के आहुति देते हैं द्रोण पात्र से, तो वो इसको इस रूप में देखेगा जो कर्म कांडी होगा, यानी इसका आदि भौतिक अर्थ वो जानेगा। जो वैज्ञानिक होगा वो इस मंत्र को कैसे देखेगा कि इंद्र कहाँ है, सूर्य में रहने वाली एक शक्ति है, और वो कितना द्रव्यमान एक बार में यानी सेकंड के भी 10वें हिस्से में वो कितना पी जाता है, तो वो सूर्य का एक द्रव्यमान निकालेगा, उसके आधार पर सूर्य कब तक चलेगा शास्त्र में पता लग गया, उसके आधार पे वो पूरा द्रव्यमान निकाल देगा कि सूर्य में कितना द्रव्य रखा हुआ है, ये गणित का विषय हो गया। क्यों जी, वो एक कला में, विकला में कहते हैं, एक विकला यानी सेकंड का ढाई हिस्सा समझ लो और भी कम, वो इतना द्रव्यमान खाता है, ये जो त्रिंशत वाली बात है, तो वो पूरे दिन का निकाल लो, पूरे दिन के निकालने के बाद में पूरे महीने का निकाल लो, पूरे महीने का निकालने के बाद में पूरे साल का निकाल लो, साल का निकालने के बाद में एक चतुर्युगों का निकाल लो, चतुर्युगों के बाद में क्या काल गणना होती है हमारे यहाँ, क्या काल गणना होती है चतुर्युगों के बाद में, मनवंतर। तो एक मन 14 मनवंतर होते हैं जिसमें अभी 6 हो गए हैं, सातवा चल रहा है, सातवें की भी 28 चतुर्युग चल रही है, तो वो उसका निकालेगा, एक मनवंतर का निकाल लिया, 14 मनवंतर अभी तक जितना बीत चुका है, तो इतना द्रव्यमान सूर्य खा चुका है और अभी कितना खाएगा, ये देखो बिना किसी सूर्य पे गए हुए हैं, गणना, गणना सूर्य सिद्धांत में है, गणना वेद में है, वेद के मंत्र भी है, अथर्ववेद में एक सूक्ति है, तो इससे पूरी गणना है। वो जहाँ सूर्य की और सोम की बात आ रही है वहां सीधा पहला इंद्र एना मध्य तिष्ठत सीधा ही मंत्र आ रहा है, वो इंद्र है, वहां घटना वहां की चल रही है, बादलों की बात नहीं चल रही है। वो एक अलग विषय हो गया, सामान्य विज्ञान है, जब विशेष की चर्चा चलती है सामान्य उपदेश है, विशेषान अनुपदेश है। कम बुद्धि वाले तो वेद समझेंगे कैसे, कम बुद्धि वालों के लिए इतना समझ ले कि कर्म कांड में ये सारे तीन है पात्र होते हैं, इंद्र उससे पी रहा है, और ये कर्म कांड क्या है ध्यान देने की बात है, ये यज्ञ आप ये ना समझे कि आपने अपना शास्त्र में लिखे ऋषि ध्यानंद करके यज्ञ अपना होती दे ली, सूर्यम वही अग्निहोत्रम, सूर्य क्या है अग्निहोत्र, जो अग्निहोत्र में घटना हो रही है वही घटना यहाँ क्या तत्व का विनियोग करे, अग्ने स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। ये सामान्य नहीं है क्योंकि अभी तक आप उस तरीके से पढ़े नहीं या समझा नहीं गया, इसलिए लगता है अपन जिस दिन आपको इसके रहस्य का पता लग गया, आप इसको समय पे करोगे, श्रद्धा से करोगे और विज्ञान मान के करोगे, ये क्या है, ये क्या है कि अग्ने स्वाहा ऐसे कह दिया गया, वहां ये सारी घटना हो रही है। नहीं, इंद्र की जो अग्नि है वो अग्नि स्वाहा, वो पहले पैदा हुई है, इंद्र ने जो पैदा किया, इंद्र भी बिना उसके कोई काम नहीं कर सकता, अपनी सबकी शक्तियां का नाम अग्नि है, सारे देवताओं की शक्ति पहली शक्ति का नाम क्या है अग्नि है, और वो अग्नि क्या काम करेगी, सोमाय उसी सोम में विस्फोट करेगी जो अपाम रसम उद्वेश, और प्रजापते और उसके बाद में इंद्राय और इंद्र के मिलने के बाद में फिर पृथ्वी पते, सो उसके बाद में पृथ्वी पे आती, चार घटनाओं के यहाँ पहुंच रही, वो सारी घटना है भाई, वो ऋषियों ने ऐसे कर्म कांड नहीं बना दिया कि धर्म से संबंध है, हमारी तो प्रयोगशाला ही यज्ञ है। महर्षि सिद्धानंद ने क्या कहा, दोबारा याद करो, जब तक याद नहीं होगा छोड़ा नहीं जाएगा, कल सब याद करके आए हूँ, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प व्यवहार, शिल्प व्यवहार ध्यान देने की बात है, जो शिल्प व्यवहार का जो तकनीक विद्या, शिल्प का क्या आता है तकनीक, और जो पदार्थ विज्ञान है जो जगत के उपकार के लिए किया जाता है उसको पदार्थ विज्ञान है, और ये चार पदार्थ हैं जिनको आप आहुति दे रहे हैं। शिल्प अकस्मात, वाह बताइए शिल्प अकस्मात बताइए, धातु तीन है, एक एक से कीजिए, तीन धातुओं से शिल्प शब्द बना है, सल संचन्य से भी बना है, हाँ, और किससे बना है, महर्षि दयानंद ने इसका निर्वचन भी किया है, हाँ ठीक है, बिल्कुल निर्वचन के नजदीक पहुंच गए, करो शो तनु करने से भी बना है, शला गतो भी है, संचन्य भी है, अनेक धातुओं से बनता है। अब शिल्प क्या है, तकनीक विद्या, ये मकान बनाना भी एक तकनीक है या नहीं है, कौन सी चीजें कहाँ रखी ये भी एक तकनीक है, ये भी एक तकनीक है, और ये हमारे ग्रंथ लुप्त हो गए, नहीं तो दुनिया में हमारी तकनीक होती, आज भी हमारी तकनीक है या नहीं है, आज तक हमारे महल बन रहे हैं, क्या ये बिना तकनीक के बिना प्रारूप बनाए बनेंगे क्या इतने बड़े बड़े महल? 17 लाख वर्ष पुराना पुल अभी तक सुरक्षित है, क्या बिना तकनीक के बन गया क्या? कहते तकनीक तकनीक अंग्रेजों ने आई, अंग्रेज दुनिया में थे नहीं 17 लाख वर्ष पूर्व। तो ये हमें अपनी चीजों पर विश्वास नहीं है तो उनकी मान लेते हैं, सारी बताएंगे एक दिन तकनीक पे प्रवचन होगा आगे कभी यज्ञ में होगा तो, कि ये तकनीक तकनीक कहाँ से आई है क्या, और वेद में कहा कितनी अभी भी हमारी तकनीक कितनी महान है। आगे चलते हैं तो ये पूरा कर लें। तो तीन तत्रेतद याज्ञिका वेद्यन्ते त्रिंशद उक्तपात्राणी माध्यम दिने सवने एक देवतानि तानि तस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति तानि अत्र सरांसि उच्यन्ते। पात्र हैं उनको ये क्या कहेंगे, एक बार में ही आहुति उनकी वहां दे दी जाती है, और देवता कौन है, इंद्र है, और इंद्राय स्वाहा, उसके बाद ही फल मिलता है। मध्या माध्यम दिने स्वने, तीन स्वन तीन विभाग होते हैं ये जिके, प्रातः स्वन जो 3 बजे से प्रारंभ हो जाता है और जब तक सूर्य निकल लेता उसके बाद तक भी चलता रहता है, उसके बाद में माध्यम दिन स्वन होता है जो प्रात रास आदि करके वो प्रारंभ करते हैं, सूर्य छिपने से पहले पहले उसको कर लेते हैं। तृतीय स्वन होता है, उसका नाम तृतीय स्वन है, स्वयं स्वन नहीं है। तो ये तीन स्वन है, सूर्य के भी तीन स्वन है, नहीं तीन त्रिकाल संध्या है नहीं, वो सारी पूरी की पूरी घटना है। सूर्य के भी तीन स्वन, एक प्रातः काल का सूर्य, एक माध्यान का, एक जब छिपने वाला सूर्य, और अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, ये सूर्य का तृतीय स्वन है। आगे चलते हैं, बिना कर्म कांड के पढ़ाया नहीं जा सकता, जिन्होंने सोम्य अग्नि देखे ना सत्य ब्राह्मण पढ़े। एक देवतानि तानि तस्मिन् काले एकेन प्रतिधानेन, एक बार एक विचार करके ही पिबन्ति तानि अत्र सरांसि उच्यन्ते, उक्त पात्र यहाँ सरांसि है। त्रिंशत् अपर पक्षस्य अहोरात्र, अपर पक्ष होता है, पूर्व पक्ष होता है, कौन कौन से होते हैं, एक तो भाई पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होता है, एक अपर पक्ष होता है, एक अपर पक्ष तो अमावस्या वाला हो गया, और पूर्व पक्ष क्या होगा, पूर्णिमा वाला हो गया। तो वही कह रहे हैं अहोरात्र त्रिंशत् पूर्व पक्षस्य इति निरुक्तः, तो दिन और रात मिला के 30 हो ही जाते हैं। तद या एता चांद्रमस्य आगामिन्य आप, ध्यान देने की बात है, जो चंद्रमा से आने वाले जल हैं, या चंद्रमा में क्या है, सूर्य से ही आप आ रहे हैं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, हमने मंत्र पहले बताया था, चंद्रमा गंधर्व एक रश्मि चंद्रमसम प्रति दिव्यते सुषुम्ना नाम का, तो सुषुम्ना नाम की जो रश्मि है चंद्रमा प्यारी अपना प्रकाश, इनको कब पता लगा, अभी कुछ वर्षों पहले, और हमारे ऋषि कब जान रहे थे, 1,96,08,53,114 वर्ष पूर्व, इनकी कैसे मान ले, और यहीं से गया कि किसी न किसी परंपरा में चीजें यहीं से चुरा के ले गए। हाँ, इनका पुरुषार्थ का धन्यवाद है, आप लोगों को धन्यवाद इसलिए कि आप लोगों ने पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ करते तो आज हम ही होते दुनिया में। और आगे चलते हैं, तो तद या एता चांद्रमस्य आगामिन्य आपो भवन्ति रश्म्यता अपर पक्षे पिबन्ति, तो जब वो चला जाता है रश्म्य उसको पी जाती है। और तथापि निगमो भवति, इसका भी मंत्र है, यम अक्षितिम अक्षितया पिबन्ति, जिस रश्मियों को गति को रश्मियां पी लेती, रश्मि रश्मि को पीती है, बताइए कैसे कैसे भाई? अब जो है जो अभी अभी प्रारंभ हो गया ना, पूर्णिमा चली गई, अभी अभी कौन सा अपर पक्ष प्रारंभ हो गया, तो इसका प्रकाश कहाँ चला गया, चंद्रमा का प्रकाश को कौन पी रहा है, सूर्य रश्मियां पी लेती, मतलब यहाँ आने ही नहीं देती, वो पृथ्वी का तो चक्कर है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं, पर उसमें वैज्ञानिक रहस्य ये है। तारे का भी मंत्र आगे आएगा, तारों में किसका प्रकाश है, तम पूर्व पक्षम आप्यायन्ति, किंतु पहले पक्ष में उसको वो बढ़ाती है, कौन, सूर्य रश्मियां चंद्रमा को पहले पक्ष में बढ़ाती हैं और दूसरे पक्ष में वही उसका रस को पी जाते हैं, इसलिए अमावस्या वाले दिन क्या होता है, चंद्रमा यहाँ भूमि पे होता है, हाँ, इसलिए उस दिन जो है सोम रहता है। आप देख लेना, गाय भी ज्यादा दूध देती हैं, मधुमक्खी भी अपना पूरा शहद रख देती है, पीती नहीं है उस दिन में, उपवास करती है, पूरा शहद भरा होता है, हाँ आप देख लेना, पूरा भरा हुआ मिलेगा, ये विज्ञान है पूरा, वो जानती है, हमसे ज्यादा बुद्धिमती है कि चंद्रमा यहाँ आ गया, उसका आनंद लो, क्यों खाओ पियो, आगे चलो, तथा देवा अंशुम आप्यायन्ति, और देवता लोग जो है वो अंशु को बढ़ाते, अंशु नाम है सोम, और धीरे धीरे फिर एक पक्ष दूसरा पक्ष, सोम लता की भी यही पहचान है, प्रतिपदा को एक पत्ता होगा, द्वितीय को दूसरा पत्ता होगा, तृतीय को तीसरा पत्ता होगा, और होते होते पूर्णिमा को पूरे उस दिन कोई उसका रस पी ले तो सारे रोग समाप्त, पुनर्युवा, 400 साल जिएगा फिर कम से कम, मिले तो खोजो, हमने तो उसकी पहचान बता दी। तो हमारा समय हो गया है, और ये आज हमने विचार किया कि भाई सूर्य में क्या घटना हो रही है, और देखो बिना आधुनिक का सहारा लिए हम सूर्य में कितना द्रव्यमान जल गया है और कितना अभी बचा है हम निकाल सकते हैं केवल एक मंत्र से, ना हमें कैलकुलेटर की अपेक्षा है और ना हमें कंप्यूटर की है, कंप्यूटर भी फेल है हमारे सामने। तो ये है वेद का विज्ञान, इसको पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे, देश को, विश्व को, अपने आप को बचा लोगे, नहीं दुनिया तो नष्ट होने की तैयारी में बैठी हुई है। पर बिना पढ़े ये बात समझ में नहीं आएगी, महर्षि दयानंद की आज्ञा, जब तक शिक्षा से लेकर वेद तक नहीं पढ़ेंगे ना तो समाधि लगे ना कुछ चीजें समझ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऋषि बनने के बाद की ये क्रिया है, और ऋषि बिना वेद मंत्रों के साक्षात्कार के और बिना सारे ग्रंथों को पढ़े वेद समझ में, तो ये नियम है। ओम शांति शांति शांति। एक बार परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, उसके कारण जो हमें मेधा प्राप्त हुई है उसका भी धन्यवाद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।